क्या आपने इसके पहले कभी ये सोचा है कि अंतिम घड़ियां यानी कि मौत के बाद क्या और मौत से पहले क्या? आपके मन में इस विषय पर अगर सचमुच कुछ प्रश्न है तो अवश्य जानिए। मौत के बाद क्या? क्या मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि योनियों में पुनर्जन्म लेती है? क्या मौत के बाद मनुष्य आत्मा स्वर्ग या नरक में परलोक में जाती है? समाचार पत्रों में छपे पुनर्जन्म संबंधित वृत्तांत आत्माओं के योनि परिवर्तन के प्रश्न पर एक नए दृष्टिकोण से विचार करेंगे। और क्या देवताओं और असुरों में इनकी कोई अलग अलग योनियां होती है? अमृत द्वारा मृत्यु पर विजय, अमर पद की प्राप्ति, मृत्यु के बाद हर एक आदमी के साथ जाता है एक बिस्तर और एक बोरी, मौत से पहले क्या, फिर करेंगे कब, कहां से आया? तो अब हम पहले ये समझेंगे कि मौत के बाद क्या। किसी न किसी दिन तो हर एक मनुष्य को मरना ही है, यह एक अटल सत्य है। तो प्रश्न उठता है कि मौत क्या है और मौत के बाद क्या होता है। यह प्रश्न हर एक व्यक्ति के जानने योग्य है, क्योंकि मृत्यु अथवा काल तो सभी के सिर पर मंडरा रहा है, परंतु बहुत से मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर जानने का भरसकर प्रयत्न नहीं करते। वे सोचते हैं कि मरना तो है ही, मरने के बाद जो होगा सो देखा जाएगा, उसके लिए अभी से विचार करने की क्या आवश्यकता है। वे आत्मा वात्मा की चर्चा को आज की परिस्थिति में व्यर्थ मानकर अन्न धन और जन की बातों पर अधिक सोचते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस विषय में उत्सुकता रखते हैं और इस बारे में वे प्रचलित मान्यताओं को जानते भी हैं, परंतु वे सोचते हैं कि मौत के बाद की गति के बारे में मौत के मुंह में जाने वाले मनुष्य जो कुछ बताते हैं, पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं, या अगर ठीक है तो किस अंश में ठीक है। अतः जीवन और मृत्यु की पहेली को वे भी हल किए बिना अधूरा ही छोड़ देते हैं और आखिर एक दिन मौत आ जाती है। और उन्हीं के बारे में उनके मित्र संबंधी कहते हैं, हमारा यह संबंधी स्वर्ग सिधार गया। कहां है स्वर्ग? कैसे जाना आपने कि वह स्वर्ग सिधार गया है? और शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग सिधारने वाली चीज का क्या परिचय है? इत्यादि इत्यादि प्रश्नों का उत्तर तो कोई भी नहीं देता। देखिए प्रचलित मान्यताएं। मौत के बाद की गति के बारे में प्रचलित मान्यताओं में से एक तो यह है कि मनुष्य आत्मा पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियों में जाकर कर दुख भोगती है, और यदि उसके कर्म अच्छे हो तो वह स्वर्ग में सुख भोगती है। एक मत यह भी है कि मौत के बाद अच्छी आत्माएं तो परलोक चली जाती है अथवा ज्योति तत्व में लीन हो जाती है, और पाप आत्माएं नरक में दंड भोगती है। ऐसे भी संप्रदाय है जिनका मत है कि मरने के बाद मनुष्य कब्र में दाखिल हो जाता है, आखिर जब कयामत आती है तब जाते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे भी मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है, मौत के बाद मृतक देह ही बचती है बस। प्रश्न उठता है कि क्या ये बातें सत्य है? इनमें कौन सी बात कहां तक सत्य है? अब हम इनमें से हर एक मान्यता पर विचार करेंगे। इस विषय में न केवल विवेक के आधार पर विचार करेंगे, बल्कि कालों के भी काल त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा द्वारा उद्घाटित रहस्यों के आधार पर भी इस विषय को समझेंगे। इसके लिए इसके अतिरिक्त समय समय पर समाचार पत्रों में पुनर्जन्म के संबंध में जो वृत्तांत प्रकाशित होते रहे हैं उनका अध्ययन करते हुए भी सत्यता पर पहुंचने की चेष्टा करेंगे। समाचार पत्रों में जो वृत्तांत छपते रहे हैं उनसे न केवल यह मालूम होगा कि मौत के पहले मनुष्य के जो संस्कार या कर्मों का लेखा बनता है उसका क्या परिणाम होता है। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि क्या मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि योनियों में पुनर्जन्म लेती है। चीर काल से भारतवर्ष में यह मान्यता चली आ रही है कि मनुष्य आत्मा को अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप पशु पक्षी इत्यादि योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से प्रायः तीन ही युक्तियां पेश की जाती रही है। यहां हम उन तीनों युक्तियों में से एक एक को लेकर कर उस पर विचार करेंगे तथा अन्य भी कुछ प्रमाणों द्वारा यह स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में मनुष्य आत्मा पशु पक्षी अथवा कीट पतंग आदि इत्यादि योनियों में जन्म पुनर्जन्म नहीं लेती। पहले हम ये देखेंगे कि क्या पशु पक्षी इत्यादि योनियां मनुष्य आत्मा में सुधार लाने के लिए है। योनि परिवर्तन के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग प्रायः एक दलील तो ये पेश करते हैं कि दयालु और कृपालु परमात्मा मनुष्य आत्मा के सुधार के लिए उसे पशु पक्षी योनि में भेज देते हैं। वे कहते हैं कि हर एक देश की सरकार अपराध वृत्ति वाले नागरिकों के लिए जेल बनाती है। जेलों का एक उद्देश्य यह भी होता है कि अपराधी लोगों को अपराध करने की स्वतंत्रता न मिले और कुछ काल तक के लिए वे अपराधी वृत्ति का प्रयोग न कर सकने के फलस्वरूप उस वृत्ति से छुटकारा पा लें और सुधर जाएं। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य यदि चोरी करता है अथवा हिंसा तथा खून करता है तो कुछ वर्ष जेल में रहने के फलस्वरूप वह उतने वर्ष चोरी चकारी या कत्ल खून नहीं कर सकता क्योंकि वह वहां बंदी होता है, एक कोठरी में बंद रहता है अथवा उसे हथकड़ियां या बेड़ियां लगा दी जाती है। इसका शुभ परिणाम यह होता है कि उसकी चोरी और अपघात आदि की वृत्तियां प्रयोग में न आने से छीन हो जाती है अथवा मिट जाती है, अर्थात उस मनुष्य का सुधार हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे लोग भी जब ये देखते हैं कि इस मनुष्य को बुरे कर्मों के फलस्वरूप जेल मिली है तो वे भी अपराध से बचकर कर रहने का यत्न करते हैं। तो जैसे अपराधी को जेल मिलने से अपराधी का और दूसरे का भी सुधार होता है, वैसे ही मनुष्य आत्माओं को भी पशु पक्षी इत्यादि योनि मिलने के फलस्वरूप उन आत्माओं का अपना सुधार हो जाता है और दूसरे को भी यह भय बना रहता है कि यदि हमने बुरे कर्म किए तो हमें भी मनुष्य योनि छोड़कर निकृष्ट योनियों में बंदी होना पड़ेगा। अब हम इस तर्क पर विचार करके देखेंगे कि क्या यह ठीक है, क्या पशु पक्षी इत्यादि योनियां मनुष्य आत्मा में सुधार के लिए है। इस तर्क पर विचार गंभीरता पूर्वक विचार करने पर आप मानेंगे कि वास्तव में जेल अथवा कारागार में बंदी होने पर मनुष्य का सुधार नहीं होता, बल्कि जेल में अन्य अपराधियों के संग में तो मनुष्य अधिक ही बुराइयां सीख जाता है। जेल के बाहर तो मनुष्य को अच्छे तथा बुरे दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का संग मिल सकता है और वहां अच्छे व्यक्तियों के संग में उसका सुधार भी हो सकता है। परंतु कारागार में तो प्रायः अपराधी और दंडनीय व्यक्ति ही होते हैं और उनके संपर्क में आने से तो मनुष्य उनसे और भी बुराइयां ही सीखता है। इसी कारण किसी अपराध प्रिय माने क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति के माता पिता भाई बंधु आदि यह यत्न करते हैं कि वह व्यक्ति बुरा होने पर भी कहीं जेल में न भेज दिया जाए, वरना वहां जाकर कर तो वह और भी बुरा हो जाएगा और निर्लज्ज तथा पक्का अपराधी कन्फर्म्ड क्रिमिनल भी हो जाएगा और फिर उसका सुधार करना कठिन होगा। सरकार भी इस बात को मानती है कि जेल में व्यक्ति को दंड तो मिलता है परंतु उसका सुधार नहीं होता है। इसीलिए आज प्रगतिशील देशों में यह प्रयत्न हो रहे हैं कि जेलों में सुधार की कोई मनोवैज्ञानिक, शिक्षात्मक अथवा सांस्कृतिक युक्तियां अपनाई जाए। पुनश्च सभी इस बात को भी मानते हैं कि सुधार का सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली तरीका तो मनुष्य को कर्म का ज्ञान देना ही है और अनुशासन प्रिय बनाना ही है, न कि उसे किसी स्थान पर बंद कर देना। जेल से बाहर तो फिर भी शिक्षा, ज्ञान या सत्संग द्वारा मनुष्य को सुधारने का अवसर मिलता है, परंतु जेल में तो यह अवसर ही नहीं मिलता। बहुत बार समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं कि अमुक जेब कतरे ने जेल से छुट्टी मिलने से ही बाजार में फिर से किसी की जेब काट ली और वहां अपराध करते हुए पकड़ा गया। तो स्पष्ट है कि जेल में मनुष्य की अपराध वृत्ति पर शोध नहीं होता और मनुष्य वहां सुधरता नहीं बल्कि बिगड़ता ही है और कई मनुष्य तो जेल के पक्षी ही बनकर कर रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि मनुष्य आत्मा का किसी दूषित वृत्ति के अथवा वासना के कारण पशु आदि योनि में पुनर्जन्म हो तो वह वहां बिगड़ेंगी बिगड़ेंगी ही, सुधरेंगी नहीं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चोरी की मनोवृत्ति वाला है, वह प्रायः चोरी करके ही अपने पेट भरने का साधन जुटाता है। अब मान लीजिए कि योनि परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार इस पाप कर्म का अथवा संस्कार के कारण उसे अगला जन्म बिल्ली योनि में मिलता है, क्योंकि बिल्ली में भी प्रायः चोरी करके बिल्ली में भी ये देखा गया है कि प्रायः चोरी करके ही वो खाती है। तो स्पष्ट है कि बिल्ली की योनि में जन्म लेने के परिणाम स्वरूप उस आत्मा का चोरी करने का संस्कार तो पक्का ही होगा, उसका सुधार तो होगा ही नहीं। वहां उसकी चोरी की वृत्ति मिटेंगी नहीं बल्कि अधिक ही प्रयोग में आएंगी। फिर बिल्ली योनि में उस आत्मा का अच्छा संग वह शिक्षा तो मिल ही नहीं सकती जो कि आत्मा के सुधार के लिए आवश्यक है। अच्छा संग और ज्ञान तो आत्मा को मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है, अतः बिल्ली की योनि में तो उसका सुधरना संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि की को शिक्षा तो मिली, वो सुधर गया, परंतु यदि वह डाका डालने की वृत्ति के परिणाम स्वरूप अगले किसी भी जन्म में शेर की योनि में चला जाता तो उसका सुधार कैसे हो सकता था। योनि परिवर्तन की मान्यता निराधार है। कोई मनुष्य कह सकता है कि चोरी करने के संस्कार वाली आत्मा का अगला जन्म बिल्ली योनि में नहीं होगा बल्कि ऐसी योनि में होगा जिसमें चोरी न करनी पड़ती हो। अच्छा मान लीजिए कि चोरी करने वाली मनुष्य आत्मा का अगला जन्म शेर की योनि में होगा, तब तो और भी बुरी बात है। चोरी का संस्कार पहले था, दूसरे को अपघात पहुंचाने का और हिंसा करने का संस्कार अब और हो जाएगा, यह तो पता नहीं हुआ, सुधार कहां हुआ। कोई व्यक्ति कह सकता है कि शेर योनि में भी नहीं कबूतर की योनि में जन्म होगा। चलिए मान लीजिए कि कबूतर की योनि होगा, परंतु कबूतर तो बड़ा भोला होता है। चोरी के संस्कार वाले चालाक और होशियार आदमी में भला इतना भोलापन कहां से आ गया कि वह कबूतर बन गया। चोर तो सिपाही को आते देख कर चंपत हो जाता है, परंतु कबूतर तो बिल्ली को आते देखकर आंखें मूंद लेता है और मान लेता है कि बिल्ली आ ही नहीं रही है। कल तक जो चोर था आज वह ऐसा बुद्धू कैसे बन गया? फिर कबूतर डरपोक भी होता है, चोर तो पकड़े जाने की अवस्था में लड़का कर भी छूटने के लिए तैयार रहता है, यानी कबूतर बनने पर चोर में भय का संस्कार आ गया और नया आ जाएगा। यह सुधार तो हुआ नहीं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमें क्या मालूम कि चोरी करने वाला मनुष्य किस योनि में जाएगा, तो हम पूछते हैं कि फिर आपने मान कैसे लिया कि चोर का योनि परिवर्तन होगा? वास्तव में मनुष्य योनि ही में दुख देखकर मनुष्य का सुधार होता है। अब योनि परिवर्तन के सिद्धांत को मानने वाले लोगों का यह जो तर्क है कि जैसे अपराध करने वाले को जेल मिलते देखकर अन्य लोग भी बुरे कर्मों से बचने का यत्न करते हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले को पशु पक्षी इत्यादि योनि में देखकर मनुष्य सुधर जाते हैं और बुरे कर्मों से बचे रहते हैं। अब हम इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपराधियों को तो मनुष्य जेल में जाते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, परंतु वे मनुष्य आत्मा को तो पशु पक्षी इत्यादि योनि में जाता हुआ नहीं देखते। इसीलिए योनि परिवर्तन के मत को जानकर भी उन्हें कोई विशेष भय नहीं होता, बल्कि मनुष्य योनि में ही बुरे कर्मों के आधार पर दुख रूप फल देखकर उन्हें अधिक भय होता और वे अधिक सुधरते हैं। उदाहरण के तौर पर विचारवान व्यक्ति को जिस भी किसी कर्म से रोग, दुर्घटना, दंगा या दुख होने का आशंका हो, वह उस कर्म से बचकर रहने का यत्न करता है। वास्तव में पशु योनि को देखकर भी मनुष्य को जो भय होता है, उसका भी मूल कारण यह है कि वह मनुष्य योनि के बुरे कर्मों का फल दुख के रूप से देखता है। अगर भूल अथवा विकर्म के फल स्वरूप मनुष्य योनि में दुख न होता, तब तो शायद मनुष्य कभी पापों से डरता ही नहीं। अतः सच मानिए, विचारवान व्यक्ति तो मनुष्य को भी लूले, लंगड़े, गूंगे, अत्यंत निर्धन और दुखी लोगों को देखकर बुराई से बचने की प्रेरणा ले सकता है और सुधर सकता है। बुराई से बचकर रहने के लिए उसे योनि परिवर्तन का सिद्धांत मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारवान व्यक्ति तो मनुष्य योनि में पशु पक्षी इत्यादियों से भी अधिक दुखी मनुष्यों को देखता है। वह तो मनुष्य योनि को कर्म योनि के अतिरिक्त भोग योनि मानकर अपने कर्मों में सुधार लाता है। अतः यह जो मान्यता है कि पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जाने से आत्मा की जो दूषित वृत्तियां हैं वो मिट जाती है और कि दूसरा मनुष्य भी पाप से बचा रहता है, यह तथ्यहीन है। यदि इसमें तथ्य होता तो आज इस बात को मानने वाले करोड़ों लोग निर्विकारी जीवन व्यतीत करते और पूर्णतः पवित्र होते, परंतु हम व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं देखते। हाँ, मनुष्य जीवन में मनुष्य को किन्हीं कर्मों से जो दुख मिलता है, उन कर्मों को करते हुए मनुष्य को भय होना, ये हम देखते हैं। दूसरे यह भी देखा जाता है कि मनुष्य परमात्मा को धर्मराज मानकर भी उससे थोड़ा बहुत डरते हैं और कर्म फल को अटल मानकर भी बुरे कर्मों से बचने की चेष्टा करते हैं। दूसरे की अब आप देखिए, क्या मनुष्य आत्मा दंड भोगने के लिए पशु पक्षी इत्यादि योनि में जाती है? योनि परिवर्तन को मानने वाले लोग दूसरा तर्क प्रायः यह पेश करते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार अपराध करने वाले व्यक्ति को जेल का बंदी बना देती है और उसे दंड देती है, वैसे ही सारे विश्व की सरकार जो परमपिता परमात्मा है, वह भी पाप कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनि में दंड भोगने के लिए भेज देता है। इस प्रकार वे पशु पक्षी इत्यादि योनियों को मनुष्य आत्मा के सुधार के साधन के अतिरिक्त दंड भोगने की भी आवश्यक व्यवस्था मानते हैं। परंतु विचार करने पर आप मानेंगे कि आत्मा तो मनुष्य योनि में भी दंड भोगती है, तब भला उसे पशु पक्षी इत्यादि योनि में जाने की क्या आवश्यकता है। मान लीजिए कि कोई मनुष्य दूसरों का तिरस्कार करता है, लोग जब भी उसके पास आते हैं वह उन्हें धुतकार देता है और वैसे भी वह लोगों से ठीक व्यवहार नहीं करता। योनि परिवर्तन के सिद्धांत को मानने वाले लोग कह सकते हैं कि ऐसा मनुष्य कुत्ते की योनि में पुनर्जन्म लेता है और कुत्ते के रूप में जब वह एक घर से दूसरे घर पर रोटी के टुकड़े के लिए जाता है तो लोग उसका भी तिरस्कार करते तथा उसे धुतकार कर और फटकार कर उसे भगा देते हैं और वह गली या किसी सड़क पर पड़ा रहता है और अंत में रास्ते में ही मरा हुआ पड़ा मिलता है या मर जाता है। परंतु हम देखते हैं कि एक अत्यंत निर्धन और कुरूप मनुष्य भी जब दयनीय अवस्था में घर घर मुट्ठी भर आटा मांगने के लिए जाता है तब उसे भी तो लोग दो कड़वे शब्दों से संबोधित करते हैं, अपने दरवाजे के सामने से हटा देते हैं और वह बेचारा 100-200 घर पर जाकर कर हाथ फैलाने लगे तथा लोगों की चुभी चुभती हुई बातें सुन सुन के उसके बाद ही अपना पेट भर पाता है। अतः मनुष्य होते हुए जो तिरस्कार तथा दुर्व्यवहार सहन करना पड़ता है वह उस कुत्ते की दुख की अनुभूति से अधिक, कहीं अधिक कटु अनुभूति है, क्योंकि मनुष्य में कुत्ते से तो अधिक ही सम्मान, स्वाभिमान और अनुभव की शक्ति है। वह मांगता भी तो पटरियों तथा पगडंडियों पर पड़ा रहता है और अंत में सड़कों के किनारे सर्दी से ठिठुर कर, गर्मी में लू से आक्रांत होकर या क्षुधा से पीड़ित होकर या रोग और दुर्बलता का शिकार होकर मरा पड़ा रहता है। तो जब हम देखते हैं कि पशु पक्षी इत्यादि योनियों में मनुष्य आत्मा को पुनर्जन्म लेने पर जो दुख हो सकता है उससे कहीं अधिक हर प्रकार का दुख उसे मनुष्य योनि में मिलता है, तो यह क्यों माना जाए कि पशु पक्षी इत्यादि योनिया मनुष्य आत्मा के दंड की योनिया है। अब आप बताइए, यदि पशु पक्षी योनि में दंड मिलेगा तो न्यायालयों की क्या जरूरत है। पुनः सोचने की बात है, यदि पशु पक्षी इत्यादि योनिया मनुष्य आत्मा के लिए दंड भोगने के लिए है तो फिर संसार में न्यायालय और उनकी द्वारा दंड व्यवस्था क्यों है। हर देश की सरकार को सोचना चाहिए कि हर एक मनुष्य बुरे कर्मों के फलस्वरूप पशु पक्षी इत्यादि योनियों में पुनर्जन्म लेकर दुख तो भोगेंगे ही, तब अपराधियों को इसी मनुष्य जन्म में दंड देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता क्यों है, क्या आवश्यकता है। लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि वकीलों को इतनी फीस देकर, न्यायालय को भी स्टैम्प फीस आदि देकर कर उनसे न्याय मांगने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अन्याय करेगा वह अगले जन्म में गधा, घोड़ा, चूहा, चमगादड़ या भेड़ बंदर तो बनेगा ही, तब हम क्यों न्याय मांगने का कष्ट भार अपने ऊपर उठा लें। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो योनि परिवर्तन के सिद्धांत को मानने वाले जो लोग हैं उनको चुप होकर कर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उनका मतव्य तो यह है कि कभी हिंसक आक्रमणकारी अगले जन्म में पशु पक्षी दीन अवस्था में रहेंगे, तब हम क्यों इन भावी पशु पक्षी इत्यादियों से जो अगले जन्म में बनने वाले हैं इनसे माथा फोड़ी क्यों करें और अपने धन जन को क्यों गवाए। आक्रमण करने दो इन सभी को, अगले जन्म में ये सभी गधे घोड़े बनेंगे और हम सवारी तथा सामान ढोने का काम में आएंगे हमारे, या तो ये भैंस आप बकरी आदि बनेंगे, हम इनका दूध पिएंगे। परंतु हम देखते हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं सोचता। नहीं, आजकल के हिंसा वृत्ति वाले अथवा पाप मनोवृत्ति वाले कोई पशु बन रहे हैं। यदि यदि योनि परिवर्तन का सिद्धांत सत्य होता तो आज सारा विश्व एक चिड़ियाघर माने जू के से अधिक कुछ न होता। यहां मनुष्य को देखने को यहां मनुष्य देखने को भी नहीं मिलते, क्योंकि सभी मनुष्य दूसरे जन्म में कीट पतंग छिपकली छछुंदर या शेर चीता बाघ लकड़बंद की जो है वो बन जाते।
प्राकृतिक आपदाएं क्यों? ध्यान देने के योग्य एक बात यह भी है कि संसार में जो अग्निकांड, बाढ़, दुर्भिक्ष, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि आदि के रूप में प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा मनुष्य को दुख होता है, यह किस व्यवस्था के अनुसार है? यदि मनुष्य आत्मा को सुधारने और दंड देने के लिए पशु पक्षी इत्यादि योनियों की व्यवस्थाएं है तो आपदाएं क्यों आती है? स्पष्ट है कि मनुष्य आत्मा को मनुष्य योनि में ही दुख सुख मिलने का नियम है और योनि परिवर्तन का सिद्धांत निरर्थक है। मनुष्य जब कभी बुरा कर्म करता है उसका विशेष फल तो वह समयांतर में मनुष्य योनि में पाता ही है, परंतु उसे अशांति का थोड़ा बहुत अनुभव तो तुरंत ही हो जाता है। अतः योनि परिवर्तन की मान्यता निराधार और अनावश्यक है। मनुष्यों को पशु पक्षियों द्वारा दंड भोग। फिर हम देखते हैं कि मनुष्यों को पशु पक्षी कीट पतंग आदि द्वारा भी दुख होता है। उदाहरण के तौर पर कोई बावला कुत्ता या सांप मनुष्य को काट लेता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। चूहा मनुष्यों के कपड़े कुतर कर और काट जाता है। बिल्ली मनुष्यों की अलमारी से दूध पी जाती है। शेर मनुष्य का शिकार करके उसे खा जाता है। मच्छर मनुष्य को काटकर उसे मलेरिया का रोगी बना देते हैं। ये तो हुई पशुओं पतंगों आदि से दुख मिलने की बात। मनुष्यों को पशुओं आदि द्वारा सुख भी मिलता है। उदाहरण के तौर पर गधा घोड़ा हाथी ऊंट इत्यादि मनुष्यों की सवारी आदि के काम में आते हैं। कुत्ता चौकीदारी करता है। गाय भैंस आदि जो पशु है दूध देते हैं। मोर नाच कर मन बहलाता है। बिल्ली घर में चूहों का सफाया करके कपड़े लत्ते को कुतर कुतर से रक्षा करती है। मछली पानी साफ रखती है। बहुत से पक्षी खेतों में से कीड़े चुन लेते हैं और खेतों को नष्ट होने से बचा लेते हैं। अतः यह जो युक्ति है कि पशु पक्षी इत्यादि योनियां मनुष्य के लिए भोग योनियां है, वास्तव में उसका भावार्थ यह है कि मनुष्य को जैसे प्रकृति के द्वारा सुख दुख का भोग मिलता है, वैसे ही पशु पक्षी इत्यादि द्वारा भी सुख दुख का भोग मिलता है। परंतु इसका यह अर्थ मानना गलती है कि मनुष्य आत्मा स्वयं पुनर्जन्म लेकर पशु पक्षी इत्यादि की योनि में दुख और दंड भोगने के लिए जाती है। क्या अंते या मति सा एवं गति के अनुसार मनुष्य आत्मा पशु योनि में जन्म लेती है? योनि परिवर्तन के सिद्धांत को मानने वाले लोग तीसरा मुख्य तर्क प्रायः यह दिया करते हैं कि अंत समय माना मरते समय मनुष्य की जैसी स्मृति वृत्ति अथवा वासना होती है वैसे ही उसे योनि मिलती है। अतः वे यह कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की अंतिम वृत्ति अथवा वासना हिंसा प्रधान है तो उसे किसी हिंसक पशु योनि में ही जन्म लेना चाहिए। इसी प्रकार वे
ये कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य बहुत धनी होते हुए भी बहुत कंजूस है, किसी को धन दान नहीं देता है और अपने कार्यों में भी उस धन का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि अपनी तिजोरी में की रखवाली मात्र ही करता रहता है, तो वह अगले जन्म में सर्प योनि में जाकर कर जन्म लेगा और भूमि में दबे हुए धन के किसी मटके पर ही चढ़ा बैठकर रहता है। इस प्रकार वे ये कहते हैं कि जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव संस्कार अथवा जैसी वासना होती है, तदनुसार ही वह अगले जन्म में योनि और देह लेता है। अब इस पर विचार करके हम देखेंगे कि क्या ये तर्क ठीक है। अभी एक प्रश्न है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब यदि एक मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए कि संस्कार के अनुसार मनुष्य आत्मा पशु पक्षी योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेती है, तो यह प्रश्न यह है कि पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जो संस्कार मनुष्य आत्मा के संस्कारों से मूलतः भिन्न है, वह भला मनुष्य देह छोड़ने वाली मनुष्य आत्मा में कहां से आ जाते हैं? उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि एक मनुष्य आत्मा अपने किसी निकृष्ट संस्कार अथवा स्वभाव के कारण ऊंट या शेर की योनि में जन्म लेती है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि नर देह छोड़कर ऊंट की योनि में जाने वाली आत्मा में ऊंट की तरह काटे खाने का संस्कार अथवा स्वभाव या शेर की तरह नर वध करने के मनुष्य को खाने की प्रवृत्ति तथा शेर अथवा ऊंट जैसी अन्य विशेषताएं कहां से आ जाती है? इसके उत्तर में योनि परिवर्तन के सिद्धांत को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि आत्मा अनादि है और पहले अनगिनत बार मनुष्य से भिन्न दूसरी योनियों के संस्कार अथवा वासनाएं उनमें है, और जब वह शरीर छोड़ती है तो उनकी आत्म अंतिम जो वासना के अनुसार ही उसे अगले जन्म में देह मिलती है और उस योनि के अनुसार ही उसमें पहले से सुषुप्त संस्कार फिर से जाग जाते हैं। उनके कहने का भाव यह है कि अब जो मनुष्य आत्मा मनुष्य देह को छोड़कर ऊंट बिल्ली या शेर के तन में जाएंगी, वह आत्मा पहले भी कई बार इन योनियों को भोग चुकी है और उसके संस्कार में है और अब वह फिर से जाग जाएंगे। अब आप देखिए कि यह बात तो वे सिद्ध करनी थी कि मनुष्य आत्मा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेती है, अतः इसे सिद्ध करने से पहले ही यह मानकर कर चलना कि मनुष्य आत्मा पहले भी ऊंट शेर आदि योनियों में जन्म ले चुकी है बिल्कुल गलत ही तो है। यह तो साध्य कोटि की बात को सिद्ध मानने की भूल करना है। इस प्रकार आप देखेंगे कि किसी भी तर्क से मनुष्य आत्मा के योनि परिवर्तन की मान्यता सत्य सिद्ध नहीं होती। फिर अगर योनि परिवर्तन का सिद्धांत मानने वाले लोगों की यह सच्ची मान्यता है कि अंत समय जो मनुष्य पशुओं आदि की स्मृति में रहता है, जैसे कि राजा भरतहरि को हिरण की याद आई थी तो वह पशु योनि में जन्म लेता है, तो भी योनि परिवर्तन को मानने वाले मनुष्य की ही हानि होगी, क्योंकि अंत समय भी उसे यह ख्याल रहेगा कि पता नहीं शायद मैं भी किसी पशु योनि में जन्म लूंगा, और वह अपने इसी संकल्प के परिणाम स्वरूप उसी पशु योनि में जाएगा। जो इस सिद्धांत को नहीं मानता वह अंत के समय पशु योनि में न जाने की बात सोचेगा और न ही वह पशु योनि में जाकर कर जन्म लेगा। क्या मनुष्य आत्मा है? पशु पक्षी आदि योनियों में दंड भोगती है? हम बता आए हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि मनुष्य आत्मा पशु योनि भोगती है, वे अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए प्रायः दो बातें करते हैं। एक तो वे ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर जो अच्छे या बुरे कर्म करता रहता है, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप मनुष्य के अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं, और उन संस्कारों अथवा वृत्तियों को लेकर आत्मा उनके अनुसार ही कोई योनि धारण करती है। उदाहरण के तौर पर वे ये कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य काम वासना वाला हो, अर्थात किसी में काम वृत्ति प्रधान हो, तो वह पहले कुत्ते की योनि में जन्म लेता है, क्योंकि कुत्ते में भी काम वृत्ति प्रधान होती है। दूसरी बात वे ये करते हैं कि बुरे कर्म वाले व्यक्ति को जैसे सरकार जेल में बंद कर देती है और उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है, या अन्य किसी प्रकार से उसे सुख सामग्री से वंचित करके वह उसे दंड देती है, वैसे ही बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का दंड भोगने के लिए पशु आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है और परतंत्र होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कुत्ते की योनि में जन्म लेकर वह घर घर जाता है तो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे भगा देते हैं। परंतु क्या ये दोनों तर्क ठीक है? काम वृत्ति के कारण कामी मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है, इसका क्या प्रमाण है? हम यह क्यों नहीं माने कि आत्मा एक मनुष्य तन छोड़ने के बाद अपने संस्कार अथवा अपनी कामी वृत्ति को साथ ले जाती है, परंतु वह दूसरा जन्म भी मनुष्य योनि में ही लेती है, क्योंकि काम वृत्ति के साथ उस आत्मा में मनुष्य वृत्ति माना मनुष्य जैसा स्वभाव भी तो साथ ही जाती है और उसकी काम वासना भी तो नर अथवा नारी की देह से ही संबंधित होती है ना कि अन्य किसी योनि से। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कुत्ते से तो आज करोड़ों मनुष्य अधिक कामी है। आज मनुष्य की वृत्ति दृष्टि में तो मानो काम का स्थायी वास है। काम वासना के भोग के लिए तो उसने सब संबंध और साधन सब जोड़ रखे हैं और इस विषय को तो वह अपना एक निजी मुख्य और कानूनी अधिकार यानी कंजक्शनल राइट समझता है और इसे वह एक रसम रिवाज ही नहीं बल्कि कर्तव्य यानी कि ड्यूटी और स्वाभाविक आवश्यकता यानी कि नेचुरल माने बैठा है। अतः अंत समय की काम वृत्तियों की प्रधानता के परिणाम स्वरूप तो वह फिर भी एक कामी मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। कुत्ते की योनि का जन्म उसका मानने की बात तर्क संगत तो बिल्कुल ही नहीं है। अब दूसरी यह जो बात ऊपर कही गई है कि मनुष्य योनि कर्म योनि और पशु योनि भोग योनि है और कि दंड भोग के लिए मनुष्य आत्मा को पशु योनि मिलती है, यह भी विवेक सम्मत नहीं है, क्योंकि दंड तो मनुष्य योनि में भी आत्मा भोगती है। हम देखते हैं कि कई कुत्ते बड़े अच्छे भवनों में रहते हैं, कारों में घूमते हैं, डबल रोटी खाते हैं, जबकि एक भिखारी मनुष्य सर्दी में वर्षा में पटरियों और फुटपाथ पर रात गुजारता है और भूख के साथ उसे लोगों का उपहास भी सहन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों में पशु से अधिक बुद्धि होने के कारण मनुष्य को दुख का आभास अधिक होता है। पशु को डंडा मारने से इतना दुख नहीं होता जितना कि मनुष्य को 10-20 व्यक्तियों की उपस्थिति में कुछ अपमानजनक अपमान सूचक शब्द सुनने से दुख होता है। अतः बुरे कर्मों के फलस्वरूप दंड भोगने के लिए भी मनुष्य का या पशु योनि में जन्म लेना विवेक युक्त नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि मनुष्य योनि में ही मनुष्य अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा कोढ़ी निर्धन इत्यादि अवस्थाओं में कहीं अधिक दुख भोगता है। अब हम समझेंगे क्या मौत के बाद मनुष्य आत्मा स्वर्ग या नरक या परलोक में जाती है। आज हर एक मनुष्य की मौत के बाद प्रायः ये कह दिया जाता है कि फला व्यक्ति स्वर्ग से धार गया, परंतु ऐसा कहने वाले लोग शोक भी करते हैं, रोते भी चिल्लाते भी हैं, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वह उस आत्मा को शांति दे। वे दीपक भी जलाते हैं कि उसकी आत्मा भटक न जाए, और बाद में हर वर्ष उसके लिए श्राद्ध भी करते हैं। प्रश्न उठता है कि यदि उनके मन में सचमुच यह दृढ़ विश्वास है कि वह आत्मा स्वर्ग से धार गई है, तो उसके लिए रोते क्यों हैं? उस आत्मा को इस मृत्यु लोक के असार पदार्थ खिलाने के लिए विविध यत्न भी क्यों करते हैं? मौत के बाद यदि सभी मनुष्य आत्माएं स्वर्ग जाती रहती तो आज स्वर्ग में जनसंख्या की अति वृद्धि, ओवर पॉपुलेशन की समस्या खड़ी हो गई होती, और आजकल के मनुष्यों के जैसे संस्कार है, उन संस्कारों वाली आत्माएं यदि स्वर्ग में जाती रहती तो स्वर्ग में भी इस लोक की तरह लड़ाई झगड़े, विषय विकार, रोना पीटना लगा होता, और वह स्वर्ग भी स्वर्ग न रहकर नरक हो गया होता। आज तो मनुष्य मनुष्यता से भी गिर चुका है, जबकि स्वर्ग का अधिकार तो देव स्वभाव वाले ही व्यक्ति को हो सकता है। अतः निश्चय कीजिए कि सभी मनुष्य के कर्म बंधन इसी लोक के लोगों से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए सभी मनुष्य फिर इसी संसार में ही मनुष्य जन्म में लेकर कर सुख दुख भोगते रहते हैं। स्वर्ग और नरक है कहां? वास्तव में स्वर्ग सुख की और नरक दुख की दुनिया को कहा जाता है। स्वर्ग इस लोक से ऊपर कहीं नहीं है, ना ही नरक इस पृथ्वी के नीचे कहीं है, बल्कि सतयुग और त्रेता युग में मनुष्यों तथा अनन्य जीव प्राणियों के सत्व प्रधान होने के कारण यही सृष्टि स्वर्ग होती है, और मनुष्य दिव्य गुणों से युक्त तथा पवित्र होने के कारण देवता कहलाता है। और द्वापर तथा कलयुग में मनुष्य आसुरी स्वभाव वाले पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी होते हैं, और यही सृष्टि नरक होती है। अतः आज हम किसी की मौत होने पर यह नहीं कह सकते कि फलां व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया है अथवा अपने हेवेनली अबोर्ड चला गया है, क्योंकि सभी मनुष्य एक शरीर छोड़ने के बाद इसी सृष्टि में ही जन्म लेते रहते हैं। सुख या दुख इसी लोक में है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की जो दुनिया है वहां दुख नहीं है, और वहां मनुष्य आत्मा तो जन्म ले भी नहीं सकती। स्वर्ग अर्थात सत्ययुगी दुनिया में तो मनुष्य आत्मा तब जा सकती है जब दैवी स्वभाव वाले बने, सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो, और परमात्मा सत्ययुगी दुनिया की स्थापना करे। क्या मौत के बाद मनुष्य आत्मा परलोक में जाती है? इसी तरह परलोक में भी मनुष्य आत्माएं तभी जाती है जब उनके संस्कार पवित्र हो जाए और वे अपने कर्मों के बंधनों को काट ले अथवा पूर्व जन्मों के विकर्मों को दगद कर ले, और परमपिता परमात्मा उनका मार्ग प्रदर्शन करे। यह सब कलयुग के अंत में ही होता है। कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माएं पशुओं से भी अधिक विकारी और पतित हो जाती है। धर्म कर्म सब नष्ट हो जाता है। मनुष्यों का आहार विहार सब तमो प्रधान हो जाता है। ऐसे समय सर्वशक्तिमान, पतित पावन, कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव इस मनुष्य सृष्टि में अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को ये सभी रहस्य समझाते हैं कि आत्मा क्या चीज है, वह इस सृष्टि में कितने पुनर्जन्म लेती है, परलोक कहाँ है, स्वर्ग किसे कहते हैं, मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए और विकर्म को दगत करने के लिए पुरुषार्थ क्या है। परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान तथा योग सिखाकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं और इस प्रकार फिर से सतयुगी दैवी सृष्टि अर्थात स्वर्ग हेवेनली अबोट की स्थापना करते हैं और महादेव शंकर के द्वारा वैज्ञानिकों तथा अज्ञानी एवं अभिमानी मनुष्यों को प्रेर कर कलयुगी दुखी सृष्टि अर्थात नरक माना हेल का महाविनाश भी करते हैं। तब सभी आत्माएं महामृत्यु माना महाविनाश के परिणाम स्वरूप परलोक में ज्योति तत्व में जाकर कर निर्वाण अवस्था में मुक्त अवस्था में निवास करती है, लीन नहीं होती क्योंकि आत्माएं अविनाशी है। और परलोक में जाने से पहले वे धर्मराज की पुरी में अपने रहे हुए विकर्मों के कारण बहुत बड़ी सजाएं भी भोगती है, परंतु जिन आत्माओं ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा संस्कार बदले होते हैं और अपने विकर्म दगत कर लिए होते हैं, वे परलोक में मुक्ति प्राप्त करने के कुछ काल बाद सतयुगी देव सृष्टि माने स्वर्ग में सुख भोगती है। सृष्टि के महाविनाश से पूर्व अर्थात परम पिता परमात्मा के अवतरण और मार्ग प्रदर्शना के पूर्व कोई भी मनुष्य आत्मा कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकती और परलोक या स्वर्ग में भी नहीं जा सकती। इसीलिए मुक्ति दाता सुख दाता सदगति दाता मार्ग प्रदर्शक इत्यादि शब्दों से केवल परमात्मा ही की महिमा प्रसिद्ध है, किसी मनुष्य की नहीं। क्या मौत के बाद मनुष्य कब्र दाखिल ही हुआ रहता है? कुछ लोग मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शव को कब्र में दफना देते हैं, उसका शव तो कब्र दाखिल रहता ही है, परंतु आत्मा के बारे में कैसे कहा जा सकता है कि वह भी कब्र दाखिल ही रहती है? आत्मा तो अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य तन में पुनर्जन्म लेकर सुख या दुख भोगती ही है। यदि मनुष्य आत्माएं परलोक अथवा आलिम ए अरवाह अर्थात आत्माओं की दुनिया अथवा ब्रह्मलोक से आकर कर यहां केवल एक ही जन्म लेकर फिर कयामत तक माने कि महाविनाश तक कब्र दाखिल हुई रहती है, तब तो किसी मनुष्य के सुखी और किसी के दुखी होने का कोई कारण ही नहीं हो सकता। एक मनुष्य आत्मा का निर्धन और दलित जाति के किसी कुटुंब में शरीर लेना और अन्य किसी का धनवान धर्म प्रेमी और सुशिक्षित कुटुंब में शरीर लेना ही सिद्ध करता है कि शरीर लेने वाली आत्मा के पूर्व कर्मों का भी कुछ हिसाब किताब है, अर्थात वह पहले कुछ कर्म कर चुकी है और कर्म करने के हिसाब से जन्म ले चुकी है और जिसके आधार पर ही अब यह उसका जन्म हुआ है। इसके अतिरिक्त आज तक अनेक बालक बालिकाओं ने अपने पूर्व जन्मों के कुछ वृतांत बताए हैं, उनसे भी सिद्ध है कि मौत के बाद पुनर्जन्म तो होता ही है। अब आने वाली मौत के बाद क्या होगा? उपयुक्त से स्पष्ट है कि जन्म जन्मांतर तो मनुष्य आत्माएं इसी लोक में पुनर्जन्म लेकर पूर्ण सुख दुख भोगती आई है, परंतु अब पुनः इस सृष्टि के महाविनाश की सामग्री तैयार हो चुकी है। परमपिता परमात्मा शिव ने महादेव शंकर द्वारा वैज्ञानिकों को प्रेरणा देकर एटम और हाइड्रोजन बम तैयार करा लिए हैं और देह अभिमानी मनुष्यों के स्वभाव ग्रह युद्धों के लिए भी तैयार है तथा पापों के कारण प्रकृति भी प्रकोप करने पर उद्यत है। अतः यह जो मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दिए गए ईश्वरीय ज्ञान और योग को जीवन में धारण करके दिव्य स्वभाव वाले तथा विकर्माजीत बनेंगे, वे तो परलोक में मुक्ति और बाद में सतयुगी सृष्टि में पूर्ण सुख भी पाएंगे। अन्य सभी आत्माएं धर्मराज की पुरी में दंड भोगकर कुछ काल परलोक में निर्वाण अवस्था के बाद पुनः अपने स्वभाव अनुसार द्वापर युगी तथा कलयुगी दुखी मनुष्य सृष्टि में ही जन्म पुनर्जन्म लेंगी। इसी प्रकार वर्तमान समय वर्तमान जन्म बड़ा अनमोल है और हमें अभी दिव्य गुण संपन्न तथा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। समाचार पत्रों में छपे पुनर्जन्म संबंधित वृत्तांत। अब हम समाचार पत्रों में छपे वृत्तांतों के आधार पर स्पष्ट कहेंगे कि हमारे संस्कार, हमारा कर्म खाता, हमारे बंधन इत्यादि किस प्रकार मौत के बाद हमारे साथ चलते हैं। परंतु फिर भी मनुष्य आत्मा पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेती। जून और जुलाई 1968 में दैनिक नवभारत टाइम्स नई दिल्ली के रविवारीय परिशिष्टों में प्रोफेसर एच एन बैनर्जी द्वारा लिखे कुछ समाचार प्रकाशित होते रहे हैं। प्रोफेसर बैनर्जी का कहना है कि उनके पास वर्तमान काल में हुए कोई 500 व्यक्तियों के नाम और पते आदि है जो कि बचपन में ही अपने पूर्व जन्मों के हालात बताने लगे थे। उनमें कोई 10-12 व्यक्तियों का उल्लेख बैनर्जी ने उक्त समाचार पत्रों में किया है। इन व्यक्तियों में से कुछ भारत के हैं, कुछ बाहर के, कुछ आदि सनातन धर्म के हैं और कुछ मुसलमान धर्म के, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के। पुनर्जन्म संबंधित इन दिलचस्प वृत्तांतों को पढ़ने और उन पर मनन करने से जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, संस्कार आदि से संबंधित अनेक रहस्यों पर प्रकाश पड़ता है। उन रहस्यों का संक्षिप्त उल्लेख यहां किया गया है। आप देखेंगे कि पुनर्जन्म संबंधित यह समाचार परमपिता परमात्मा शिव द्वारा समझाए गए सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं। पुनर्जन्म के समाचार द्वारा आत्मा के बारे में नास्तिकता का खंडन। नवभारत टाइम्स में लगातार 7 परिशिष्टों में पुनर्जन्म संबंधित जो समाचार फोटो, नाम और पते सहित छपे हैं उनसे कट्टर से कट्टर नैरात्म्यवादी को भी इतना तो मानना ही चाहिए कि शरीर से भिन्न आत्मा नाम की कोई अविनाशी चीज है। जिन 8-10 बच्चों का हाल प्रकाशित किया गया है उन बच्चों ने बोलना सीखते ही अपने जन्म का हाल बताया, अपने पिछले माता पिता तथा संबंधियों का भी परिचय दिया और जब उन बच्चों को उन द्वारा बताए गए स्थानों के निकट ले जाया गया तो उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के घर, दुकान, स्कूल आदि को पहचान लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व जन्मों की कुछ ऐसी भी बातें बताई जिनके पूर्व जन्मों के संबंधी मान गए कि हाँ, उस व्यक्ति के साथ उनकी यह बातें हुई थी। सभी बच्चों ने यह भी बताया है कि पूर्व काल में उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी।
अब इससे अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्व जन्म के बारे में क्या दिया जा सकता है? यदि इस संसार में जब कोई व्यक्ति किसी घटना का स्थल, समय, परिस्थिति आदि ठीक प्रकार से बताता है और उसके कथन के विरुद्ध कोई साक्षी नहीं मिलती, तो न्यायालय द्वारा उसके ही हक में फैसला होता है। अतः जबकि इन व्यक्तियों के पूर्व जन्म के मित्र तथा संबंधी इन द्वारा बताए गए पूर्व वृत्तांतों की साक्षी देते हैं, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को सत्य मानना ही न्याय है। यों भी सोचने की बात है कि मनुष्य की मृत्यु होने पर उसका शरीर तो जला या दफना दिया जाता है, अतः इस जन्म में यदि कोई बच्चा पूर्व जन्म के हालात बताता है तो स्पष्ट है कि शरीर न रहने पर भी एक वस्तु बची रहती है जो कि दूसरा शरीर धारण कर लेती है और अमर रहती है, अतएव आत्मा का अस्तित्व तो सिद्ध ही है। फिर जो लोग ये मानते हैं कि ब्रेन या मस्तिष्क ही सब कुछ है, उन्हें भी अपने मंतव्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। ब्रेन तो शरीर के साथ ही जल जाता है, दूसरा शरीर लेने पर दूसरा ब्रेन मिलता है, दूसरे ब्रेन को पहले जन्म के वृत्तांतों का क्या पता और पुनर्जन्म के संबंधियों से उसका क्या लगाव, उनसे उनका भावनात्मक माना इमोशनल संबंध क्यों? देह अभिमान अज्ञानता पर आधारित है। पुनर्जन्म के बारे में छपे समाचारों से यह स्पष्ट है ही कि देह से अलग आत्मा नाम की कोई चेतन वस्तु है जो कि अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करती है। यों पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग आत्मा के अस्तित्व को मानते भी हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में आज सभी नर नारी स्वयं को देह मानकर बरतते हैं। इसी देह अभिमान के कारण ही मनुष्य के जीवन में राग द्वेष मनोविकार और उनके परिणाम स्वरूप दुख है। यह बात हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। लंका में हुआ वृत्तांत। प्रोफेसर बैनर्जी के 7 जुलाई 1968 को प्रकाशित हुए लेख में यह एक समाचार भी लिखा है कि नवंबर 1962 में लंका देश में नुगेगोन नगर में श्री और श्रीमती जयसेना नामक युगल के घर एक लड़का पैदा हुआ। 2 वर्ष की आयु में ही बच्चे ने अपने इस जन्म की मां से कहना शुरू किया, तुम मेरी असली मां नहीं हो, मेरी असली मां विवेनगोंडा नामक में नगर में रहती है। ऐसी बातों से उसकी मां दुखी तो जरूर हुई, मगर अप्रैल 1965 तक उसने बातों की गंभीरता को नहीं समझा। एक दिन लड़के समेत जयसेन परिवार के लोग अपने दोस्तों से मिलने माटोल नगर को जा रहे थे। रास्ते में 24 मील के पत्थर से गुजरते ही बच्चा सीट पर खड़ा होकर कर चीखने लगा, मेरी मां यहां रहती है। मां ने उसकी वर्तमान समय की जो मां है उसने बच्चे की सच्चाई की तह तक पहुंचने की ठान ली कि अब इस बात को जड़ तक मुझे जाना है। बच्चे को कहा गया कि वो कार के आगे आगे चले और दिखाए कि उसकी असली मां कहां है। बच्चे को मिठाई की कुछ गोलियां दी गई कि वह अपनी असली मां को दे। बच्चा भीड़ को चीरता हुआ चला और उसने अपनी पूर्व जन्म की मां, जिसे वह अब असली मां कहता है, श्रीमती विनी सेवावी रत्ने के पैरों पर मिठाई का पैकेट रख दिया। वह उनसे ऐसे मिला जैसे अपने घर वालों से कोई मिल रहा हो। बच्चे ने अपने भाई को भी पहचान लिया
और उसे यानी कि भाई को असली नाम से पुकारते हुए अपनी असली मां को याद दिलाया कि एक बार उसके भाई को उसने पीटा था। बच्चे ने चाचा चार्ली के बिजली के कारखाने की बात भी की और अपने खेतों की तरफ इशारा भी किया। इन बातों से श्रीमती सेनावी रत्नी यानी पूर्व जन्म की जो मां है वो हक्का बक्का रह गई और उन्होंने माना कि 1960 में उनका जो बच्चा मर गया था उसी ने ही अब जय सेना के बेटे के रूप में जन्म लिया है। स्वयं आत्मा होते हुए भी देह का अभिमान। उपयुक्त समाचार पर विचार करने से स्पष्ट है कि बच्चा अपने पूर्व जन्म के हालात को जानते हुए भी अर्थात पुनर्जन्म को मानते हुए भी स्वयं को एक अविनाशी आत्मा मानने के बजाय एक देह ही मानता है। यदि वह स्वयं को एक देह न मानकर एक आत्मा मानता तो पुनर्जन्म की मां को मेरी असली मां न कहकर कर मेरे पूर्व जन्म की देह की मां कहता, क्योंकि श्रीमती सेनावी रत्ने ने उनकी पूर्व देह को जन्म दिया था और श्रीमती जयसेना ने अब उसकी वर्तमान देह को जन्म दिया है। वह स्वयं तो अविनाशी है जो कि देह के जला दिए जाने के बाद में भी मरा नहीं, परंतु देखिए कि मनुष्य का देह अभिमान इतना पक्का हो जाता है कि वह पूर्व देह को त्याग देने के बाद भी उस देह की माता को अपनी माता मानता है। वर्तमान देह की माता को अपनी माता मानना तो देह अभिमान है ही, पुनर्जन्म की देह के जलाए जा चुकने के पश्चात और नई देह लेने के बाद भी अपनी पूर्व देह की स्मृति का होना तथा स्वयं को पूर्व देह मानना और उस पूर्व देह के संबंधियों से पूर्व नातों का व्यवहार करना तो सिद्ध करता है ही कि मनुष्य पक्का देह अभिमानी यानी कि बॉडी कॉन्शियस बन चुका है। उसका यह देह अभिमान आत्मविस्मृति और अज्ञानता पर आधारित है। ज्ञानवान मनुष्य तो स्वयं को आत्मा निश्चय करता है और सभी दैहिक संबंधों को अल्पकालीन मानता है। दूसरा निष्कर्ष, देह अभिमान से राग द्वेष और राग द्वेष से दुख पुनर्जन्म के हालात को पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि देह अभिमान से ही राग द्वेष इत्यादि की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर 6 जून 1968 के नवभारत टाइम्स के रविवारीय परिशिष्ट में छपे इस समाचार को पढ़िए। इस्माइल का जन्म 1965 में तुर्की में आदान जिले के एक पंसारी और कसाई का धंधा करने वाले एक परिवार में हुआ था। एक दिन अपने बाप के पास लेटे हुए उसने कहा, मैं असल में आबित सुजुलमस हूं जिसे कत्ल कर दिया गया था। इस्माइल ने अपने पूर्व जन्मों का सारा समाचार सुनाया और यह भी बताया कि उसका कत्ल किसने और कहां पर किया। ये सभी बातें ठीक निकली। इस्माइल हमेशा अपने पुराने परिवार और प्रियजनों के ख्यालातों में डूबा रहता है। कभी कभी उसकी यह हालत देखकर उसके मां बाप के लिए समस्या बन जाती है। एक बार इस्माइल के पिता कुछ तरबूज लेकर कर आए थे। इस्माइल ने कहा कि इसमें से सबसे बड़ा मेरी बेटी गुलसरीन के लिए भिजवा दो। जब उसके बाप ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वो फूट फूट कर रोने लगा अब आप देखिए कि यद्यपि इस्माइल एक छोटा सा बच्चा है, तथापि पूर्व देह की स्मृति के कारण वह अपने पिछले जन्मों की बेटी को आज भी अपनी बेटी मानता है और पिता पुत्र की राग में लिप्त होकर कर बात करता है। तभी तो वो उसके लिए तरबूज भेजने की बात करता है। उसके पूर्व जीवन की दैहिक पुत्री उससे आज भी इतना राग है कि यदि उसके लिए तरबूज भेजने को कोई इनकार करता है तो इस्माइल फूट फूट कर कर रोने लग जाता है और अपने वर्तमान दैहिक पिता से रुष्ट हो जाता है। तो सिद्ध है कि देह अभिमान से राग की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य के राग पर आधारित इच्छा की पूर्ति में कोई व्यक्ति रुकावट डालता है तो उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में रोष पैदा हो जाता है और राग द्वेष के परिणाम स्वरूप दुख पैदा होता है। जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में इस्माइल अपने रागात्मक स्वभाव की तृप्ति न होने के कारण फूट फूट कर रोया और दुखी हुआ। अतः यदि मनुष्य विकारों तथा दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे चाहिए कि स्वयं को एक अविनाशी आत्मा निश्चय करे, वरना उसके दुखों का अंत न होगा। क्योंकि देह अभिमान के कारण मनुष्य में जो राग द्वेष पैदा होते हैं उनसे लिप्त मनुष्यों के कर्म विकर्मों का रूप धारण करते हैं और वह विकर्म बुरे संस्कारों के रूप में आत्मा अपने साथ ले जाती है और उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप पुनः दुख पाती है। यह बात आगे आपसे चर्चा करते समय कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। तीसरा निष्कर्ष, आत्मा कर्मों का लेखा जोखा साथ ले जाती है। अभी हम लोगों ने जो चर्चा की इसमें इस्माइल के पुनर्जन्म का उल्लेख हम करके आए, उसी के जीवन की इस घटना का उल्लेख भी दिनांक 6 जून 1968 के नवभारत टाइम्स के रविवारीय परिशिष्ट में प्रकाशित हुआ है। एक बार मोहम्मद नामक एक आइसक्रीम वाला तुर्की के मेदिक जिले में आया जहां आजकल इस्माइल रहता था। इस्माइल ने उसे रोककर कर पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? जब आइसक्रीम वाले ने इनकार किया तो इस्माइल ने कहा, तुम मुझे भूल गए हो, मैं अभी तू, पहले तुम आइसक्रीम के बजाय तरबूज और साग भाजी बेचा करते थे। उस आदमी ने इस बात की तस्दीक की और बच्चे के साथ बहुत देर तक बातें करने के बाद मान गया कि उसके माने इस्माइल के इस्माइल में आबिद का पूर्व जन्म हुआ है। जब उसका बाप आइसक्रीम के पैसे देने लगा तो लड़के ने कहा, अब्बा उसको पैसे मत दो क्योंकि उसकी तरफ मेरे तरबूज के पैसे निकलते हैं। मोहम्मद ने आबिद के कर्जे की बात मानी। आइसक्रीम बेचने वाले ने इस्माइल के पिछले जन्म जिसका नाम आबिद है के कर्जे की बात मानी। अब आप देखिए कि इस्माइल को अपने पूर्व जन्म की यह बात मालूम थी कि जब वह आबिद नाम वाला व्यक्ति था तो मोहम्मद यानी तरबूज बेचने वाला व्यक्ति की तरफ उसके पैसे रहते हैं, अतः उसने तो अब आइसक्रीम लेकर कर वहां पिछला हिसाब किताब थोड़ा बहुत चुकता कर दिया, परंतु किसी को अपने पूर्व जन्म के हालात न भी मालूम हो तो भी पिछले जन्मों के लोगों के साथ उनका कुछ हिसाब किताब रहा तो होता ही है ना। उसी पिछले हिसाब किताब के कारण ही मनुष्य को वर्तमान जन्म में वर्तमान समय के जन्म में किन्हीं व्यक्तियों के अनायास और बिना विशेष परिश्रम के कुछ प्राप्ति होती है और अन्य कुछ एक को उसे यूं ही देना दिलाना पड़ता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल स्वयं को एक आत्मा निश्चय करे, बल्कि पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति से उसे घाटा होता है या किसी प्रकार से कुछ हानि होती है तो उसे अपना पूर्व जन्म का हिसाब किताब समझकर शांति धारण करे, यत्न करे। यत्न करने के बाद भी योजना के विपरीत अगर फल निकलता है तो उसे भावी अर्थात पूर्व कर्मों का फल मानकर धैर्य और संतोष धारण करना चाहिए। चौथा निष्कर्ष, मौत के बाद संस्कार आत्मा के साथ। विचार करने पर आप यह निष्कर्ष भी लेंगे कि मनुष्य आत्मा न केवल अपने पूर्व जन्म का कर्म खाता साथ ले जाती है, बल्कि उसके पिछले संस्कार भी उसके साथ ही जाते हैं। हम यह बात आपको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। दिनांक 30 जून 1968 को प्रकाशित नवभारत टाइम्स के परिशिष्ट में लिखा है, कृष्ण किशोर को अपने जुड़वा भाई कृष्ण कुमार से बड़ा प्यार है। कृष्ण कुमार उसे अपनी हर चीज देता है। एक दिन जब उससे पूछा गया कि वह कृष्ण कुमार को इतना क्यों चाहता है तो उसने कहा कि वह पूर्व जन्म में उसका माने कृष्ण किशोर रसोईया था। एक दिन बच्चे ने अपनी मां को बताया कि उसे उनके घर का खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अपने घर में बहुत अच्छा खाता था, माने पिछले जन्म में बहुत अच्छा खाता था, उसे अच्छी अच्छी मिठाइयां मिलती थी। उसके पास पिछले जन्म में एक बंदूक, दो कारें और एक बड़ा घर था। उसके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। उसने कहा कि उसका नाम पुरुषोत्तम था। किसी दिन जब इस लड़के ने मिठाई मांगी तो उसे प्लेट में थोड़ी शक्कर रख कर दे दी गई। उसने गुस्से में यह कहकर फेंक दी कि उसे पहले ढेरों रसगुल्ले मिलते थे और उसे घर यानी पिछले वाले घर में न ले जाया गया तो वो मर जाएगा। लड़के के चाचा और माता पिता आदि ने जब सब बातों की जांच की ठान ली तो लड़के ने अपने पूर्व जन्म का घर, संबंधी आदि पहचाने और इस बात की तस्दीक हुई कि पिछले जन्मों में जब वह पुरुषोत्तम दास था तो उस पुरुषोत्तम दास के पास 2 कारें और 1 बंदूक थी और वह मिठाइयों के बड़े शौकीन थे। अब आप देखिए कि मिठाइयां खाने का जो शौक का या जो चस्का पिछले जन्मों में पुरुषोत्तम को लगा था वह अब तक अर्थात मरने के बाद कृष्ण किशोर के रूप में उसका जन्म होने पर भी अभी तक है। तभी तो वह पूर्व जन्म के अपने रसोईये यानी अपने जुड़वा भाई वर्तमान समय के को प्यार भी करता है और मिठाई न मिलने पर कहता है कि यदि मुझे अपने घर न भेजा गया तो मैं मर जाऊंगा। गोया मिठाई या रसगुल्ले के बिना उसका जीवन जीवित रहना ही मुश्किल है और वर्तमान घर में रहना उसे नहीं भाता। स्पष्ट है कि इस जन्म में यदि जीभ पर कंट्रोल नहीं होगा तो अगले जन्म में भी हम चस्के के गुलाम बने रहेंगे। इसी प्रकार यदि अनन्य इंद्रियों पर भी हम काबू नहीं पाएंगे तो अगले जन्म में हमें उनके वशीभूत होना पड़ेगा। बल्कि आपने देखा कि रसगुल्ले के स्वाद के पीछे भागने वाले को अब तक रसगुल्लों की बजाय शक्कर ही पल्ले पड़ी। जो व्यक्ति जिस विषय के पीछे भागता है अथवा जिस विषय को लिप्त होकर भोगता है उस मनुष्य की तृष्णा उतनी ही बढ़ती है। अतः मनुष्य को अपने कर्मों के लिए बड़ा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि कर्मों से संस्कार बन जाते हैं और संस्कार मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाते हैं और अगले जन्म में भी उसे परेशान करते हैं, तथा उसके वशीभूत हुआ मनुष्य फिर भी वैसा ही कर्म करता है। मोह, ममता और संस्कार ऐसी रस्सियां हैं जो दिखाई नहीं देती परंतु मनुष्यों को बांधे रखती है। यह बात कई उदाहरणों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। पांचवा निष्कर्ष, मोह, ममता और बुरे संस्कारों के कारण दुखपूर्ण जन्म मरण का बंधन। अभी कृष्ण किशोर और कृष्ण कुमार के पुनर्जन्म का जो उदाहरण दिया गया है उस पर विचार कीजिए। कृष्ण किशोर पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम नाम वाला एक सेठ था और कृष्ण कुमार उसका रसोईया। उस पिछले जन्म में पुरुषोत्तम को मिठाइयों का चस्का था और उसका रसोईया उसे अच्छी मिठाइयां बना कर देता था। इस कारण से पुरुषोत्तम को अपने रसोइये में मोह ममता उत्पन्न हुई और मिठाइयों में आसक्ति का संस्कार बना। उसका परिणाम यह हुआ कि मोह ममता की रस्सियों से बंधे हुए उस पुरुषोत्तम का और उसके रसोइये का अगला जन्म जुड़वा भाई के रूप में हुआ और उस दूसरे जन्म में भी वे मोह ममता की रस्सियों में बंधे रहे। इन्हीं मोह ममता के बंधनों का एक उदाहरण और लीजिए। 2 जून 1968 के रविवारीय परिशिष्ट में बैनर्जी ने लिखा है कि ओआना और जेकेलिन नाम वाली दो बच्चियां थी। इनके पिता का नाम श्री पोलक था। ये दोनों बच्चियां अपने गांव में एक दूसरे का हाथ थामे चर्च की ओर जा रही थी कि वे एक मोटर कार के नीचे आ गई। इनकी मृत्यु के पश्चात श्री और श्रीमती पोलक के घर जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए उन्होंने अपने पूर्व जन्मों का सारा हाल कह करके सुनाया। उन्होंने यहां तक भी बताया कि इनकी मृत्यु कार के नीचे आ जाने के कारण हुई थी। आज भी छोटी बच्ची बड़ी बच्ची से हूबहू वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि पूर्व जन्म में करती थी, और वह यह भी कहती है कि पूर्व जन्म में वह उसकी छोटी बहन थी। इस प्रकार के अनेकों उदाहरणों से सिद्ध होता है कि मोह, ममता और संस्कार ऐसे सूक्ष्म बंधन है कि जिनमें बंधा हुआ व्यक्ति जन्म मरण भोगता तथा दुख पाता है। अतः यदि मनुष्य दुख जनक जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति या जीवन मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह मोह ममता को छोड़े और अनासक्त होकर तथा रूहानी प्यार को अपनाकर व्यवहार करे, वरना मनुष्य इन द्वारा खींचा हुआ सा दूसरे दूसरे घर में जन्म लेता है। पुनर्जन्मों के समाचारों द्वारा छठा निष्कर्ष, क्या मरने के बाद मनुष्य आत्मा स्वर्ग जाती है या पशु योनि लेती है? पुनर्जन्मों के जो समाचार नवभारत टाइम्स तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित हुए हैं उन सभी द्वारा यह तो सिद्ध होता ही है कि मनुष्य आत्मा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म नहीं लेती, क्योंकि आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि पूर्व जन्म में वह घोड़ा या कबूतर था, बल्कि सभी ने अपने पूर्व जन्मों में मानव शिशु होने का ही दावा किया है जो कि प्रमाणित भी हुआ है। परंतु इसके अतिरिक्त इन समाचारों से यह भी सिद्ध होता है कि मरने के बाद कोई भी आत्मा स्वर्गवासी नहीं हुई, बल्कि उसने इसी संसार में किसी न किसी घर में दूसरा जन्म लिया है। आज तक किसी भी आत्मा ने यह नहीं कहा कि वह स्वर्ग गई थी या नरक गई थी, जहां पर कि कोई वैतरणी नदी थी या कि कोई गाय की पूंछ पकड़कर पार हो जाना पड़ता है। अतः हर एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके घर वाले ये जो कह दिया करते हैं कि वह स्वर्गवासी हुआ है, यह सरासर गलत है। और शास्त्रवादी लोग ये जो कहते हैं इस संसार से, इस संसार के नीचे कोई नरक है, यह भी बिल्कुल गलत है। वास्तव में मनुष्य आत्मा को मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेकर सुख या दुख भोगना पड़ता है, और यही संसार द्वापर और कलयुग में नरक है तथा सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग है। सातवां निष्कर्ष, आत्माओं का अलग अलग होना सिद्ध। इसके अतिरिक्त पुनर्जन्मों के समाचारों से यह भी सिद्ध होता है कि आत्माएं अलग अलग है और कर्ता भोक्ता आत्मा ही है, न कि देह। दो आत्माओं का अपने पूर्व जन्मों के हालात बताने से ही सिद्ध है कि आत्माएं अलग अलग है और उनका जन्म भी उन्हीं कर्मों के आधार पर अलग अलग होता है। अतः सर्वखलित वह ब्रह्म का सिद्धांत, अर्थात यह सिद्धांत कि सभी एक ब्रह्म ही के अनेक रूप है, गलत है। पुनश्च इन समाचारों से यह भी सिद्ध होता है कि अपने कर्मों का फल आत्मा स्वयं ही भोगती है। मरने के बाद शरीर का तो अंत हो ही जाता है और आत्मा पुनर्जन्म होने पर कहती है कि पूर्व जन्म में रसगुल्ले मिलते थे और इस जन्म में शक्कर मिलती है। कई लोग कहते हैं कि मन बुद्धि रूप एक कारण शरीर अथवा लिंग शरीर आत्मा को होता है, परंतु वास्तव में आत्मा स्वयं ही बिंदु रूप लिंगाकार है और मन बुद्धि उससे भिन्न भिन्न नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभवशीलता तथा विचारशीलता आदि का नाम है, वही उसके जन्म कर्म तथा भोग का कारण है। आठवां निष्कर्ष, पुनर्जन्म के सिद्धांत द्वारा नियति की बात सिद्ध। पुनर्जन्म के जो समाचार आज तक छपे हैं उन द्वारा इस संसार के सभी वृत्तांतों का पूर्व निश्चित होना भी सिद्ध होता है। उदाहरण के तौर पर पिछले चर्चा में हमने जो मोह ममता और संस्कारों की बात को स्पष्ट करने के लिए हमने जो पोलक की दो बच्चियां जुआन और जैकलीन का जो उदाहरण दिया है, जैकलीन का जो उदाहरण दिया है उस पर विचार कीजिए। पूर्व जन्म में जब वे दोनों बच्चियां बहने चर्च की ओर जा रही थी तो कार के नीचे आकर कर वे दोनों मर गई थी, और अब दोनों ने अपने उसी पिता पोलक के घर फिर से जन्म लिया है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि दोनों की मृत्यु और पोलक के घर दोबारा जन्म पूर्व निश्चित थे? वरना यदि वे न मरती तो पोलक के घर उनका दूसरा जन्म कैसे होता? पुनश्च क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कार का एक विशेष समय पर चर्च की ओर के रास्ते से गुजरना, दूसरी बच्चियों का भी उसी रास्ते से गुजरना, फिर अनायास कार के नीचे आ जाना, कार को पहले से ब्रेक न लग सकना, और उधर पोलक की स्त्री के गर्भ में पहले से ही उनके दूसरे शरीर का तैयार होना, यह सभी बातें पूर्व निश्चित थी। घटनाओं के पूर्व निश्चित माना प्री डिसाइडेड होने के कारण ही तो आज भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर लोग उसके संबंधियों को कहते हैं, जो होना था हो गया, भाभी ऐसी बनी थी, तब रोने की क्या अर्थ है? आपको मालूम रहे कि भावी निश्चित या नियति माने प्री डिसाइडेड की मान्यता केवल भारत के आदि सनातन धर्म के लोगों की ही मान्यता नहीं है, बल्कि ईसाइयों और मुसलमानों की भी यह मान्यता रही है। उदाहरण के तौर पर सेंट जॉन की बाइबल में 16वें अध्याय में पुनर्जन्म और नियति का एक हवाला मिलता है। स्वयं ईसा के बारे में लोग बताते हैं कि उससे पूर्व पैगंबरों आवश्यक होता है, फिर क्रमश वह स्थिति भी आ जाती है जब हल चलाकर धरती की उर्वरा शक्ति को ऊपर लेना आवश्यक प्रतीत लगता है। इसी प्रकार भूमि की शक्ति का हार्स होते होते यह नौबत आ जाती है कि उसमें खाद डालना भी आवश्यक हो जाता है। हार्सवाद का यह सिद्धांत जातियों और राष्ट्रों पर भी लागू होता है। प्राचीन काल की वे सब जातियां जो कभी अपने शौर्य, पराक्रम और विद्वानता के लिए विख्यात थी, नाम शेष हो गया है। उनके गत वैभव का चिन्ह इतिहास के पन्नों के सिवाय नहीं रहा। क्या आज के लोगों के वर्तमान दशा की कोई तुलना उनके पूर्वजों की उच्चता एवं शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के साथ की जा सकती है? उपयुक्त मान्यताएं जिन्हें की इस आर्य समाजी पत्र ने प्रकाशित किया है और लेखक ने वैदिक सिद्धांत कहा है पर विचार कीजिए, ये सिद्धांत सही है और अनेक युक्तियों से इसकी सत्यता प्रमाणित की जा सकती है। इन्हीं सिद्धांतों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लोगों के समक्ष रखता है, परंतु तब यही लोग कहते हैं कि यह सब तो आपकी कल्पना है। जब हम लोगों को यह समझाते हैं कि सतयुग में सभी वैभव बहुतायत से प्राप्त थे और उनके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि सभी नर नारी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, पवित्र तथा दैवी स्वभाव वाले थे, तब यही लोग कहते हैं कि सभी युग एक समान है। अपवित्रता, विकार, दुख आदि तो सभी युगों के चले आए हैं, जब हम लोगों को समझाते हैं कि हरेक धर्म, वंश और मनुष्य आत्मा के संस्कार की चार अवस्थाएं होती है, उनमें से पहली उत्तमता की अवस्था होती है और धीरे धीरे हार्स होता है, तो ये लोग कहते हैं कि यह आपकी मनगढ़ंत बातें। परंतु आगे पीछे यह स्वयं कहते हैं कि हार्सवादित का यह सिद्धांत जातियों और देशों पर भी लागू होते हैं। हार्सवाद और अकृष्ट पच्चा नामक सिद्धांतों पर विचार करने पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अब कलयुग का अंतिम चरण है, क्योंकि अब पृथ्वी में खाद और हल की आवश्यकता तो है ही, बल्कि कृत्रिम खाद की भी आवश्यकता है, और आज सब परिश्रम करने पर भी अन्न में वो पोषण शक्ति नहीं है जो कि कुछ समय पहले हुआ करती थी। आज जातियों, देशों और धर्म वंशों का नैतिक हर्ष भी बहुत अधिक हो चुका है, यह भी सब मानेंगे। अतः कलयुग को अभी तक बच्चा मानना हर्षवाद तथा अकृष्ट पच्चा नामक सिद्धांतों को यथार्थ रीति न जानना है। पुनश्च यह जो प्राचीन मान्यताएं हैं कि सृष्टि के आदि में लोग अधिक सभ्य, सदाचारी और श्रेष्ठ थे और कि परमात्मा ने स्वयं परम गुरु के रूप में ज्ञान दिया था, क्या उससे यह सिद्ध नहीं हो स्थापित होता कि कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा ने परम गुरु के रूप में मानवीय तन के माध्यम के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देकर लोगों को सभ्य और सात्विक बनाया? वरना सतयुग में सभ्य और सदाचारी लोग कहां से आ गए? नरक और स्वर्ग के बारे में निष्कर्ष। इसके अतिरिक्त हार्सवाद के आधार पर क्या यह नहीं कहा जा सकता कि यही सृष्टि प्रारंभ में सतयुग में जब पूर्ण रूप से सुख संपन्न थी तब स्वर्ग था और द्वापर युग से इसका स्पष्ट हार्ष होता है और कलयुग में यही नरक बन जाती है। अतः यह मानना गलत होगा कि स्वर्ग ऊपर कहीं है और नरक पृथ्वी के नीचे कहीं है। अब तो अंतरिक्ष यात्रियों ने भी देखा है और बताया है कि चांद में न स्वर्ग है न कोई आबादी है।
आत्माओं की योनि परिवर्तन के प्रश्न पर एक नए दृष्टिकोण से विचार। यह जो मान्यताएं हैं कि मनुष्य आत्मा अपने बुरे कर्मों का दंड भोगने के लिए पार्श्विक तथा अनन्य योनियों में जाती है, अब हम इस मत पर दंड विधान के दृष्टिकोण से विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या यह मत युक्तिसंगत है। न्याय अथवा कानून की दृष्टि से दंड के चार मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले हमको इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को दंड क्यों दिया जाता है। दंड के विधान के ज्ञाता लोग क्रिमिनोलॉजिस्ट मानते हैं कि दंड के चार मुख्य प्रयोजन होते हैं। एक तो वह है जो किसी को पहुंचाई गई हानि क्षति चोट या सदमे का बदला चुकाने के लिए रिट्रीब्यूट पनिशमेंट हो। पुराने जमाने में लोग प्रायः दंड का यही मुख्य अभिप्राय मानते थे। दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, ऐसा दंड देने की इच्छा तथा प्रणाली होती थी। यदि किसी ने एक मनुष्य का धन चोरी किया हो तो किसी प्रकार से उस व्यक्ति को भी उसके बदले में धन से वंचित करना या उसकी दंड व्यवस्था का यह उद्देश्य रहता था। आज भी दंड देने का थोड़ा बहुत यही उद्देश्य होता है। मान लीजिए कि किसी मनुष्य ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान किया है, अब यदि वह मनुष्य उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर करे और दावा जीत ले तो न्यायालय उसे एवजा दिलाएगा। दंडित व्यक्ति को बदले में अपमानित होना पड़ेगा क्योंकि वह मुकदमा हार कर झूठा सिद्ध हुआ। उसे जुर्माना भी देना होगा और लज्जित भी होना पड़ा। इस मृत्यु लोक में मनुष्य का तथा समाज का स्वभाव जो है वो बदला लेने का ही है। यह यदि पाकिस्तान में लोग भारतीय दूतावास पर आक्रमण करके क्षति पहुंचाते हैं तो यहां के कई लोगों की इच्छा होती है कि वे पाकिस्तानी दूतावास को क्षति पहुंचाए। पुराने जमाने में इस प्रकार का रिवाज अधिक था। लोग ये मानते थे कि अपराधी को बदले में दंड मिलना ही चाहिए ताकि उसे भी पता चले कि दूसरे को हानि पहुंचाने का क्या परिणाम निकलता है और जिस व्यक्ति को उसने हानि पहुंचाई है वह भी बदला चुका सके। पुराने दार्शनिकों का तथा धार्मिक विचारकों जैसे कि अफलातून माने प्लाटो ने भी इस प्रकार की जो सजा की है वो इस प्रकार की जो सजा है उसकी सिफारिश की है। वे ये समझते थे कि इससे अपराधियों का पाप मिट जाता है और बदला भी चूक जाता है, इसीलिए वे इसे पापांतकारी दंड भी मानते थे। दंड का दूसरा उद्देश्य यह रहा है कि अपराधी की पीड़ा को देखकर दूसरे लोगों को भी अपराध करने से बचे रहने की प्रेरणा मिले। अतः इस उद्देश्य से दंड को समाज के आगे उदाहरण कायम करने वाला एग्जाम्पलीमेंट्री पनिशमेंट भी कहते हैं। यही एक प्रकार से दूसरों को अपराध से रोकने वाला डिटर्न दंड भी है। यदि एक मनुष्य किसी को कत्ल करता है
और उसे आयु भर कैद दे देने से दूसरे लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। वे डर के कारण इस अपराध से बचकर रहते हैं, अतः दूसरों के आगे एक उदाहरण कायम करने वाला एग्जाम्पलीमेंट्री पनिशमेंट दंड भी है और उन्हें बुराई से रोकने वाला डिटर्न दंड भी है। दंड देने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि अपराधी फिर ऐसा कर्म न कर सके, प्रिवेंटिव पनिशमेंट, ताकि समाज को उससे रक्षा मिल सके, उसके कुकृत्यों से बचाव मिले। जेल में बंद रहने से अपराधी को छूट नहीं होती है कि वह लोगों की जेब काटे अथवा नगर में दंगा करे या भड़काने वाला भाषण करे, अतः ऐसे अपराधियों को कारावास दे दिया जाता है ताकि समाज में भी समाज खुद चैन से रह सके और अपराधी भी दंड भोगकर आगे के लिए अपराध न कर सके। किसी अपराधी को किसी नगर में न आने देना, उसे वहां भाषण करने का अधिकार न देना या अपने मकान से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा देना, यह सभी उसे आगे और अपराध करने से रोकने के लिए दंड पनिशमेंट है, अपराधी का सुधार। इन सभी के अतिरिक्त आजकल लोगों का यह भी एक दृष्टिकोण रहा है कि अपराधी को दंड देने के साथ साथ उसका सुधार भी किया जाए। वे मानते हैं कि मनुष्य किन्हीं परिस्थितियों, मजबूरियों, सामाजिक वातावरण या त्रुटियों के कारण अपराध करता है, अतः उसे केवल दंड देना उचित नहीं है बल्कि उसकी उन कमियों को कुछ ठीक करना तथा उस व्यक्ति को मानसिक रूप से सुधारना ताकि वह फिर से अपराध न करे, यह भी दंड का एक उद्देश्य होना चाहिए। जेल में आने पर दंड के साथ इस दृष्टिकोण से भी कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का विचार यह है कि यह कार्य हुए बिना दंड दूसरों के आगे कोई आदर्श अथवा कोई उदाहरण उपस्थित नहीं करता और अपराधी को आगे भी फिर अपराध करने से रोकने, प्रिवेंटिव और डिटर्न पनिशमेंट का कार्य नहीं करता। अपराधी जेल से बाहर निकलने के बाद फिर अपराध करना शुरू कर देता है। यह बात हर देश के कानूनी विषयों में शोध कार्य करने वालों ने देखी है। अपराधी को अपराध से परिचित कराना जरूरी है। ऊपर हमने दंड के चार मान्य उद्देश्य बताए हैं। इस विषय में एक महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह न्याय व्यवस्था के नियम है कि किसी भी अपराध का दंड देने से पहले अपराधी को यह बताया जाता है कि उसका अपराध क्या है। यदि कोई अपराधी पागल हो या जिस समय उसने अपराध किया था तब वह पागलपन जैसी किसी बीमारी की हालत में था तो दंड नहीं दिया जाता। इसका कारण स्पष्ट है, जबकि दंड देने से अपराधी अपने अपराध को समझेगा ही नहीं तो वह आगे के लिए रुकेगा भी नहीं, सुधरेगा भी नहीं और दूसरों के आगे उदाहरण भी नहीं बन सकेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपराधी को अपराध का दंड देने का प्रयोजन तभी सिद्ध होता है जबकि उसकी बुद्धि, उसका मन, अपनी उसकी सूझ ऐसी अवस्था में हो कि वह अपने अपराध को तथा उस द्वारा समाज को होने वाली हानि को तथा नियम और न्याय भंग के दोष को समझ सके। अपराधी के साथ न्याय के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। आज अपराध के मामले में जो विशेषज्ञ लोग हैं, उनका तो यह भी मंतव्य है कि अपराधी को जेल में बेचकर समाज से जो उसे अलग कर दिया जाता है और शिक्षा, सुधार, बौद्धिक विकास तथा चारित्रिक उन्नति के कार्यक्रमों से लाभ उठाने से वंचित कर दिया जाता है, यह वास्तव में उस व्यक्ति के साथ कोई न्याय नहीं है, ना ही अपराध के लिए सही दंड है। उस व्यक्ति को दंड मिले ताकि आगे के लिए वह अपराध न करे, यह तो ठीक है, परंतु यदि उसे अच्छे वातावरण, अच्छे संगठनों, अच्छे स्थानों में जाने के लिए ही रोक दिया जाएगा, तो वह आगे के लिए अपराध करने से रुकेगा कैसे? वह तो अन्य अपराधियों के संग में अनन्य अपराधों की भी जानकारी तथा ढंग सीखेगा और पक्का अपराधी बनकर कर निकलेगा। इससे समाज को एक तो यह हानि है कि वह सदा के लिए उस व्यक्ति को गवाह बैठेगा, अपने लिए एक शत्रु पैदा कर लेगा, और उस व्यक्ति के साथ भी यह अन्याय है कि एक अपराध करने के परिणाम स्वरूप उसे आगे के लिए अच्छा नागरिक बनने का अवसर देने की बजाय लज्जित, घृणित एवं दंडित बनाकर अपराधी समाज माने कैदियों के साथ संबंध स्थापित करने पर मजबूर कर दिया गया। अतः इस विचार से कानूनी विशेषज्ञों का कथन है कि ओपन अ स्कूल एंड क्लोज अ प्रिजन, अर्थात एक विद्यालय खोलो और एक जेल को बंद करो। क्या दंड भोग के लिए मनुष्य आत्मा को पशु योनि में जाने की आवश्यकता है? अब हम ऊपर बताए गए सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर विचार करेंगे, क्या अपने पापों का फल भोगने के लिए मनुष्य आत्मा को पशु आदि योनियों में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता है, या यह प्रयोजन मनुष्य योनि में ही ठीक सिद्ध हो सकता है? सबसे पहले तो यह बात स्पष्ट है कि न्याय विद्या ज्यूरिस प्रूडेंस विशेषज्ञों का यह जो विचार है कि अपराधी को उस अवस्था में दंड नहीं मिलना चाहिए जब उसका मस्तिष्क ठीक हालत में न हो, अथवा कि अपराध का दंड देने का उद्देश्य यह है कि अपराधी को यह महसूस हो कि उसने अपराध किया है जिसका परिणाम यह दंड है, और कि आगे के लिए अपराध नहीं करना चाहिए, इस विचार की पूर्ति तो मनुष्य जाति में ही हो सकती है। यदि मनुष्य अपने पापों के फल स्वरूप पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म ले, तो उस अल्प बुद्धि वाली अवस्था में मानसिक हर्ष की दशा में उसे कौन बताएगा तथा वह कैसे समझेगा कि वह पूर्व काल के किए हुए अपराधों का या पापों का फल इस योनि में भोग रहा है? इसके अतिरिक्त उस योनि में तो उसे सुधारने का अवसर भी नहीं मिलेगा। पशुओं में मनुष्यों जैसी कानून तो होते ही नहीं है जिनका कि वह पालन करना सीखेगा, न ही उनमें कोई चारित्रिक शिक्षा की व्यवस्था होती है कि वह सीखेगा तथा सुधरेगा। इससे तो उसकी गिरावटी होंगी और वह पक्का अपराधी ही बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काम वासना का गुलाम है और व्याभिचारी या पर स्त्री संग अडल्ट्री करता है, उसके दंड में यदि वह कुत्ते की योनि में जन्म पुनर्जन्म ले, तब वहां तो भाई बहन तथा माता पुत्र के अंतर का भी ज्ञान नहीं होता, बल्कि वह जाति तो काम प्रधान है। अतः उस योनि में दंड मिलने से तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उस योनि में भेजे जाने से न तो उस मनुष्य आत्मा के साथ न्याय है, न वह दंड सिद्ध सिद्धांत के अनुकूल है, और न ही यह समाज के लिए लाभदायक है। यदि इस प्रकार मनुष्य को अन्य योनियों में रूप कारावास में भेजा जाता रहे तो सारा मनुष्य समाज ही समाप्त हो जाएगा और अपने सदस्यों से वंचित हो जाएगा, जबकि हरेक जाति का स्वभाव यह है कि वह अपनी जाति का नाश या क्षय नहीं चाहता। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक मनुष्य से रिश्वत ली, अथवा धोखे से, बनावट से या अन्य किसी प्रकार से उसका पैसा मार लिया। अब यदि इसके दंड में उसे बिल्ली की योनि में मिले तो उसे तो उस व्यक्ति को जिसका उसने पैसा मारा था न तो एवेजा अथवा बदले में कोई रकम मिली, न ही पैसा मारने वाले व्यक्ति को दंड के रूप में कोई पैसा देना पड़ा। अतः जुर्माना क्षतिपूर्ति या मुआवजा चुकाने के लिए जो दंड रिट्रीब्यूटेड पनिशमेंट होती है यह कोई वैसा दंड तो हुआ नहीं। बिल्ली की योनि में जाने के बजाय तो यह अच्छा है कि वह आत्मा किसी निर्धन व्यक्ति के घर पर जन्म लेकर उस मनुष्य के घर का नौकर बने जिससे जिसका उसने पैसा मारा था और अपनी मजदूरी द्वारा क्षतिपूर्ति करे। हम देखते भी है कि कई नौकर अधिक कार्य करते हैं परंतु मालिक से उन्हें उतना वेतन नहीं मिलता, अथवा वह अपराधी अगले जन्म में किसी अच्छे कर्म के फलस्वरूप कोई धनाढ़ व्यक्ति बने परंतु किसी कारणवश माने किसी व्यापारी व्यापार में या अन्य किसी रीति से उतना पैसा देना पड़ जाए जितना कि पुनर्जन्म में उसने उस मनुष्य का मारा था। तो देखिए मनुष्य योनि में बदला चुकाने तथा क्षतिपूर्ति करने के रूप में दंड भोग किया जा सकता है ना कि पशु योनि में। इसका एक और उदाहरण लीजिए। अनुमान कीजिए कि कोई व्यक्ति एक प्रतिष्ठित मनुष्य की मानहानि करता है। इस अपमान या निंदा रूप में पाप के दोष में मान लीजिए कि वह किसी पशु पक्षी इत्यादि योनि में पुनर्जन्म लेता है तो इस प्रकार की व्यवस्था से वह उस प्रतिष्ठित मनुष्य की क्षतिपूर्ति कैसे कर सकता है जिसका कि उसने अपमान किया था। स्पष्ट है कि नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह स्वयं भी तो अपमानित नहीं हुआ। यदि उसने मनुष्य चोले में कोई दंड मिले, जेल मिले, जुर्माना देना पड़े या उसका अपना किसी प्रकार से किसी कारण से अपमान हो तभी तो बदले के दंड रिट्रीब्यूट पनिशमेंट का जो प्रयोजन सिद्ध हुआ माना जाएगा ना। और आप देखिए कि संसार में जब किसी मनुष्य का दूसरा कोई मनुष्य पैसा मार लेता है या अपमान करता है तो उसके धार्मिक स्वभाव वाले मित्र भी तो यही कहते हैं अजी पिछले जन्म का ही कोई हिसाब किताब रहा होगा, वही चुका रहा होगा। तो स्पष्ट है कि सभी इस बात को विवेक युक्त भी मानते हैं कि पिछले जन्म के कर्म दंड मनुष्य योनि में मिलता है क्योंकि मनुष्य आत्मा का कर्म खाता मनुष्य से ही जुटा हुआ है और उसके बदले में दंड भी मनुष्य योनि में ही मिलने से वह कर्म का खाता चुकता हो सकता है। अब दंड के दूसरे प्रयोजन पर विचार कीजिएगा। यदि कोई मनुष्य आत्मा बुरे कर्म के करने के फलस्वरूप दंड भोगने के लिए किसी पशु पक्षी इत्यादि योनि में पुनर्जन्म ले तो दूसरों के आगे कोई उदाहरण कायम करने या कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का भी अभिप्राय सिद्ध नहीं होता क्योंकि किसी को क्या मालूम है कि वह आत्मा पार्श्व आदि योनि में गई और वहां उसे दंड मिला। अपराध विद्या विशेषज्ञ स्वयं इस बात को मानते हैं कि वह अपराध का दंड मिलता देखकर लोग उससे नसीहत नहीं लेते बल्कि अपराध बढ़ता ही जाता है। इसका अपेक्षा तो जब लोग किसी मनुष्य को लूला, लंगड़ा, कोड़ी, अपाहिज, अंधा, बहरा या अत्यंत रोगी देखते हैं तभी वे बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा लेते। यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो लोग कहते भी है तू दुखी होकर कर मरेगा। मनुष्य स्वयं भी अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कहता है यदि मैंने यह कर्म किया होगा तो मेरी आंख फूट जाए, मेरे लिए जमीन फट जाए अथवा मैं रोगी होकर कर मरूं। स्पष्ट है कि विवेक तथा अनुभव के आधार पर सभी मानते हैं कि मनुष्य योनि में ही मनुष्य को अपने किए हुए पाप कर्मों का दंड मिलता है। इसी से ही लोग शिक्षा, इबारत, नसीहत अथवा स्वयं को सुधारने की प्रेरणा भी लेते, कोई मनुष्य आत्मा पशु बना नहीं बना या बनेगा इसका तो पता ही नहीं चल सकता, तब उससे नसीहत लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर यदि वह यहां कामी होने के परिणाम स्वरूप कुत्ता बना तो दूसरे और किसी दूसरे को क्या प्रेरणा मिल सकती है? कुत्ता बनने से तो वह और भी अधिक पतित ही बन गया। तीसरे दृष्टिकोण से विचार, तीसरा अभिप्राय तो यही होता है कि मनुष्य आगे के लिए बुरा कर्म करने से बच जाए, इसीलिए उसे दंड डिटर्न पनिशमेंट दिया जाता है। परंतु विचार करने पर आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि पशु इत्यादि योनियों में जाने से तो ऐसा भी नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई मनुष्य चोरी रूपी पाप करता है, अब यदि इसके दंड भोगने के लिए बिल्ली योनि में पुनर्जन्म ले तो यह दंड भोग हुआ। बिल्ली तो स्वयं ही चोरी चोरी छिप छिप कर दूध पी जाती है, इसकी बजाय यदि अगले जन्म में अथवा उसी जन्म में दंड के रूप में किसी दुर्घटना आदि के द्वारा उसके हाथ को कोई हानि पहुंचे या वह रोग के कारण घर में पड़ा रहे तो वह चोरी के करने के प्रयोजन से रुक जाएगा। अतः अपराध की प्रवृत्ति से रोकने वाला दंड भी मनुष्य योनि में ही मिलना विवेक युक्त मालूम होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दंड विधान या न्याय सिद्धांत के अनुसार भी मनुष्य आत्माओं का दंड भोग के लिए अन्य योनि में गमन करने की युक्ति संगत मालूम नहीं होता। फिर आप विचार कीजिए कि दंड देने का भाव तो यही होता है कि जिसे दंड मिले वह उसे महसूस करे, उसे अपने अपराध की सजा माने। यह भी मनुष्य योनि में ही दंड मिलने पर दंड संभव है। आपने धार्मिक स्वभाव के मनुष्य को रोग शोक धन हानि आदि इत्यादि की स्थिति में ये कहते हुए सुना होगा, अजी क्या पूछते हो, मन बड़ा दुखी है अथवा रोग बड़ा कड़ा है, क्या करें, हमारे भाग्य ही ऐसे, हमारे कोई पिछले कर्मों की सजा ही हम भोग रहे हैं या पिछले कर्म ही ऐसे है। तो स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में ही इस बात का एहसास मतलब रियलाइजेशन ख्याल हो सकता है कि यह मेरे अपने कर्मों का दंड है। पशु पक्षियों में तो यह ज्ञान हो ही नहीं सकता, न उनमें ऐसा कुछ एहसास देखने में आता है। क्या देवताएं, दैत्य, असुर कोई अलग योनियां है? यह बात विवेक के आधार पर भी स्पष्ट की जा सकती है कि मनुष्य आत्मा में किन्हीं मानवीय स्वभाव परक अव्यक्त योग्यताओं मतलब ह्यूमन फैक्टिलिटीज के कारण पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियों में नहीं जाती, परंतु अज्ञानता के कारण उसके संस्कार विचार या कर्म पशुओं से अधिक तुच्छ कोटि के हो सकते हैं। तब प्रश्न उठता है कि यह जो मान्यताएं प्रचलित है कि मनुष्य आत्माएं देव योनि धारण करके स्वर्ग में या राक्षस योनि पशु आदि योनियों में भ्रमण करती है, इसका अर्थ क्या है? क्या देव योनि कोई अलग योनि है या नहीं? गहराई से सोचने पर आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि संस्कार विचार और कर्म के आधार पर मनुष्य आत्मा की कम से कम तीन अवस्थाएं होती है। सतयुग और त्रेता युग में मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान संस्कार वाली होने के कारण वस्तुतः देव आत्माएं ही है, अतः मालूम रहे कि देव योनि अलग योनि तो नहीं है परंतु सत्युग में जबकि मनुष्य आत्माएं दिव्य गुण संपन्न और सत्व प्रधान होती है, उसके शरीर की प्रकृति यद्यपि मनुष्य जैसी ही होती है, परंतु वह शरीर काम वासना के भोग द्वारा उत्पन्न न होकर ऊर्ध्व रेता माता पिता के ब्रह्मचर्य व आचरण तेज अथवा आत्मिक बल से होता है, जिसे योगज जन्म भी कहा जा सकता है। अतः देवताओं की अलग योनि मानना तो उचित नहीं है। उनका वर्ण तथा उनकी अवस्था मतलब ऊर्ध्व रेता और सत्व प्रधान तथा पावन अवस्था अलग मानना विवेक संपन्न है। फिर द्वापर युग से मनुष्य का जो जन्म काम विकार द्वारा होने की परिपटी प्रचलित होती है, ऐसे जन्म को मैथुनी जन्म भी कहा जाता है। मैथुन रूपी कर्म को अथवा काम विकार को यानी स्त्री संभोग को कई लोग पशु धर्म भी कहते हैं। अतः सत्युग में जो देवताएं थे वे पुण्य क्षीण होने के बाद अथवा प्रारब्ध समाप्त होने के बाद द्वापर युग के प्रारंभ से पशु धर्म में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे काम विकार के वशीभूत हुए। द्वापर युग के आरंभ में तो काम विकार आटे में नमक की मिसाल की तरह था, समयांतर में वह प्रारब्ध होता गया और आज कलयुग के अंतिम चरण में तो मनुष्य बहुत ही पतित हो गए हैं। आज हम देखते हैं कि गाय भैंस बकरी आदि पशु तो फिर भी उतने पतित नहीं है जितने मनुष्य पतित है आज। इस प्रकार द्वापर युग के पतित होने के बाद अर्थात काम विकार के वशीभूत होने के बाद मनुष्य आत्माएं पशु धर्म मतलब काम विकार वाली तो हुई, परंतु उन्होंने पशु योनि में जन्म नहीं लिया। हमारे इस कथन का भाव यह है कि यह पशु बुद्धि हो गई, अर्थात उनका आहार व्यवहार आदि पशुओं जैसा निकृष्ट हो गया है। और जैसे ही आज मनुष्य भी ज्ञान शून्य धर्म भावना से वंचित तथा योग से विमुख है, इस दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि मनुष्य आत्माएं उत्तरोत्तर में पशु तुल्य अर्थवा पशु बुद्धि या पशु धर्म वाली हो गई है। किसी कवि ने भी कहा है, योषाम न विद्या न तपो न दामन ते मृत्यु लोके भुवि भार भृता मनुष्य रूपेन मृगाश्य यरन्ति। अर्थात जिसमें विद्या तप या दान वृत्ति आदि इत्यादि नहीं है वे मनुष्य के रूप में होने पर भी मानो पशु है। दूसरी व्याख्या तो यह हो सकती है कि सत्युग और त्रेता में आत्मा के जितने शारीरिक जन्म थे वे चूंकि योगज थे और उस युग में चूंकि शरीर तथा स्वभाव दैवी थे इसीलिए वह जन्म दैवी थे। फिर द्वापर युग में जब विकार इतने उग्र न थे और मनुष्य कुछ भक्ति हठ योग संन्यास व्रत तीर्थ यात्रा यज्ञ शास्त्र पाठ आदि करता था, तब उसका जन्म या जीवन मानवी था। परंतु धीरे धीरे उसमें कौवे जैसी चंचलता, बगुले जैसी कपट, कबूतर जैसी अंधश्रद्धा, तोते जैसी रटने की आदत, सांप जैसी दूसरों को डंक मारने माने दुखी करने का स्वभाव, शेर जैसा हिंसा, कुत्ते जैसी काम वृत्ति, चूहे जैसी दूसरों को बात को कतर योक्त करने की प्रवृत्ति, जल बिन मछली की तरह तृष्णाओं के पीछे तड़पने आदि आदि की विशेषताएं आती गई। उनमें देवताओं के दिव्य गुण तो प्राय लुप्त हो गए, परंतु लाखों पशु पक्षी कीट पतंगों आदि योनियों में से किसी न किसी योनि वाले जीव का जैसे संस्कार आ गया। हो सकता है कि इस बात को किसी ने यो कह दिया हो कि मनुष्य आत्मा देवता, मनुष्य आत्मा देवता, मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेती है। एक मानवीय जीवन में मनुष्य कई प्रकार का मानवीय स्वभाव धारण करता है, अतः हो सकता है कि इस बात को उन्होंने यो कह दिया हो कि आत्मा 84 लाख मनुष्य योनियां धारण करती है। फिर मनुष्य कभी तो बंदर की तरह 5 विकारों के वशीभूत हो जाता है और कभी सत्संग के प्रभाव से कछुए की तरह कर्म इंद्रियों को समेट लेता है और कभी दिव्य विवेक प्राप्त होने पर हंस की तरह झूठ से अलग रहता है तथा सत्य को ग्रहण करता है। अतः हो सकता है कि शायद इस दृष्टिकोण से किसी ने यह कह दिया हो कि मनुष्य तो लाखों पशु पक्षी योनियां लेता है, परंतु यह बात तो स्पष्ट है कि मनुष्य आत्मा पशु तन या पक्षियों जैसा शरीर या कीड़ों जैसी काया नहीं लेती। संभव है कि द्वापर युग और कलयुग में जो मनुष्य आत्माएं अत्यंत दूषित मन तथा वचन और कर्म वाली होती है, वह शरीर के बाद कुछ काल तक, जब तक कि उसे दूसरा मानवीय तन मिले, वह भूत की तरह भी विचरती होंगी। परंतु भूत तो कोई अलग योनि अथवा कोई अलग जन्म मानना गोया अविवेक पूर्ण मत गढ़ने के तुल्य होगा। वास्तव में भूत का अर्थ है था, वास और हैड बीन। भूत का अर्थ है जो गुजर चुका है अथवा जो बीत चुका है। स्पष्ट है कि बीते हुए काल में जो मनुष्य था और जिसने अभी तक कहीं दूसरा मानवीय तन नहीं लिया, उसकी केवल मध्यकालीन अवस्था का नाम भूत है। भूत कोई अलग योनि या जन्म नहीं है। असुरों की कोई अलग योनियां नहीं है। इसी प्रकार असुरों की भी कोई अलग योनियां नहीं है, बल्कि सुर अर्थात देवताओं के विपरीत माना असुर लक्षणों वाले मनुष्य ही वास्तव में असुर है। श्रीमद् भगवत गीता में आसुरी लक्षणों का स्पष्ट वर्णन मिलता है। जो लोग तमोगुणी हैं, वास्तव में वे सभी असुर हैं। परंतु आज स्वयं को असुर मानकर ज्ञान योग द्वारा सुर माने देवता बनने का यत्न करने की बजाय अज्ञानी लोग मानते हैं कि असुर तो पृथ्वी के नीचे शायद किसी नरक में रहते हैं और उनकी शायद कोई अलग ही योनियां हैं। परंतु वास्तव में ऐसा मानना भूल करना है। आश्चर्य की बात तो देखिए कि जबकि गीता में आसुरी और दैवी लक्षणों का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, तब भी आज कई गीता प्रेमी लोग पशु पक्षी योनियों को ही असुर योनियां मानने की भूल करते हैं। यहां पर गीता तत्व विवेचनी अध्याय 16 श्लोक 19 की व्याख्या के बाद ऐसा मानने की भूल करना वास्तव में एक अचंभे की बात है। इसी तरह दैत्यों, दानवों या राक्षसों की भी कोई अलग योनियां नहीं है, बल्कि मानव ही जब अत्याचार और असत्य के पथ पर चलता है तो दानव हो जाता है, और वही मनुष्य जब मांस मदिरा आदि तथा विषय वासना में खो जाता है तो राक्षस कहलाता है। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद मानना होगा कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करती, न ही देवताओं दैत्यों या राक्षसों की कोई अलग योनियां है, बल्कि मनुष्य आत्मा में ही संस्कारों में परिवर्तन और प्रकार का अंतर होता है। अमृत द्वारा मृत्यु पर विजय, अमर पद की प्राप्ति। चिरकाल से मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते आए हैं। लोगों का कहना है कि साइंस माने विज्ञान की खोज भी मनुष्य मृत्यु को जीतने के विषय को लेकर कर शुरू हुई थी। मनुष्यों ने बहुत पहले ही ऐसा रसायन औषधि बनाने की आवश्यकता समझी थी जिससे कि वह मृत्यु पर काबू कर सके। उस रसायन को बना सकने के पहले ही मनुष्यों ने उसे अमृत नाम भी दे दिया, परंतु वह रसायन आज तक मनुष्यों के हाथ नहीं लगा। ऐसा रसायन भला संभव ही कैसे था? प्रकृति तो स्वयं भी विनाशी है, उससे बना हुआ कोई भी रसायन मनुष्य की मरण धर्मा प्रकृति माना देह को भला अमर अथवा अविनाशी कैसे बना सकता है? अतः आज भी अनेकानेक वैद्यों की उपस्थिति में अथवा औषधियों के होते हुए भी मनुष्य मृत्यु पीड़ा से प्राण छोड़ता है, या तो अचानक ही उसका हार्ट फेल हो जाता है, उसके हृदय की गति रुक जाती है। साइंस ने अनगिनत आविष्कार किए हैं, परंतु उन आविष्कारों से मृत्यु की नौबत आ जाती है। साइंस ने मृत्यु पर विजय का तो कोई उपाय निकाला ही नहीं, बल्कि उसने तो सृष्टि के विनाश अथवा महामृत्यु के साधन ही अनुबमों उज्जनों बमों इत्यादि के रूप में मनुष्यों को मिले। यहां राम का राज्य नहीं यम का राज्य है। मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य साइंस के आधार के अतिरिक्त जप तप यज्ञ कर्मकांड इत्यादि का भी आधार लेते हैं, परंतु फिर भी मनुष्यों में मृत्यु तो आती ही है। यम की फांसी हर एक के गले में पड़ी हुई है। सबको पता है कि एक दिन जाना है। किसी भी मनुष्य के चेहरे पर पूर्ण और सदा स्थायी हर्ष नहीं है, क्योंकि कोई माने या न माने सभी पर मृत्यु का साया पड़ा ही हुआ है। यहां पर छोटे बड़े का अंतर नहीं है। बाप के होते हुए छोटे बच्चे को काल खा जाता है, अकाले मृत्यु आ जाती है, और भावी में कोई भी मनुष्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी मनुष्य का संसार में कितना ही मान रहा हो, उसे एक दिन काल के मुंह में जाना ही पड़ता है। यहां तो किसी का भी राज्य नहीं यम का राज्य है। यहां राम का राज्य नहीं बल्कि राम नाम सत्य है की ध्वनि कहीं न कहीं लगी हुई है। जगत चाबेन काल का कुछ मुख में कुछ गोद, इस कहावत के अनुसार इस लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं, क्योंकि यहां के सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यहां तो जन्म मरण के दुखों के दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई वाली कहावत हो गई है, मृत्यु का निश्चय सभी को है। अतः समझदार व्यक्ति का विचार चलता है कि यम की फांसी से कैसे छूटे। मृत्यु की पीड़ा से छूटने का पुरुषार्थ ठीक रीति से तभी हो सकता है जब ठीक रीति से यह जान ले कि मृत्यु या पीड़ा का कारण क्या है। आप देखते हैं कि इस संसार में जब कोई मनुष्य अन्य किसी के प्रति घातक हिंसा का व्यवहार करता है अथवा अपने देशवासियों के प्रति द्रोह अथवा अहित की भावना से उन्हें दुख पहुंचाता है, तो सरकार कानून के अनुसार उसे मौत का दंड देती है। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु अपने खोटे कर्मों का फल है। इसी प्रकार रोग दुर्घटना इत्यादि से मनुष्य की जो मृत्यु होती है, यह भी ईश्वरीय सरकार के नियमों के विरुद्ध आचरण का फल है। यदि मनुष्य इस लोक में श्रेष्ठ कर्म करे और काम क्रोध आदि विकारों के वश होकर विकर्म न करे तो उसे दंड नहीं भोगना पड़ेगा। हम अपने सामने अनेक ऐसे उदाहरण देखते हैं कि यह विकार ही मनुष्य को मृत्यु के मुख में ले जाते हैं। हाथी काम विकार के वश होकर कर कागज की हाथिनी के पीछे भागता है और खड्डे में जा गिरता है और इस प्रकार वह सदा के लिए कैदी बना लिया जाता है। भ्रमर फूल की सुगंध पर मोहित होकर कर उसका रस चूसता है। वह कोमल पंखुड़ियों में पड़ा रहता है और जब रात हो जाती है और पंखुड़ियां बंद हो जाती है तो वह उसके अंदर मर जाता है। पतंग रोशनी पर मुग्ध होकर न आव देखता है न ताव, उस पर जलकर मर जाता है। अतः स्पष्ट है कि कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर विषयों के पीछे भिखारी के समान भागने वाला मनुष्य भी मौत के मुंह में चला जाता है। अपनी उद्दंडता का परिणाम वह मौत के रूप में पाता है। देश की सरकार तो अपराधी को मृत्यु से बड़ा दंड नहीं दे सकती, परंतु विकारों के कारण दुख देने के रूप में अपराध करने वाले मनुष्य को मृत्यु का दंड तो मिलता ही है, लेकिन उसके बाद भी उसे गर्भ जेल भोगनी पड़ती है। इतने ही से उसका छुटकारा नहीं होगा, बल्कि अगले जन्म में भी उसे विकारों का फल दुख के रूप में मिलता है और अंत में धर्मराजपुरी में दंड पाता है। अतः किसी प्रकार मृत्यु को जीतने से मनुष्य न केवल मृत्यु के समय के कष्ट से बच जाता है, बल्कि बाद में गर्भ जेल में मिलने वाले दुख से भी छूट जाता है, अर्थात मुक्ति तथा जीवन मुक्ति पा लेता है। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति की अवस्था में तो मनुष्य शरीर से ही मुक्त होता है और निष्क्रिय माने इनएक्टिव होता है, परंतु जीवन मुक्ति की अवस्था में वह देह लेता भी है और देह का कलेवार त्यागता भी है, परंतु इन दोनों में उसे रचक भी दुख नहीं होता। जन्म और देह त्याग दोनों ही दुख रहित और सुख सहित होते हैं। जिस लोक में अभी हम है इसे मृत्यु लोक कहते हैं। जीवन मुक्ति का अधिकार होने पर मनुष्य जिस लोक में जाता है उसे अमर लोक अथवा देव लोक कहते हैं। देवता दुख देने वाले जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए नहीं होते। जबकि श्री नारायण को याद करने वाले के बारे में भी प्रसिद्ध है कि यम के पंजे से छूट जाते हैं, तो श्री नारायण के राज्य में किसी को यम दूतों की पीड़ा मिले यह भला कैसे संभव हो सकता है? अतः देवता जीवन मुक्त होते हैं। उनकी अवस्था को अमर पद कहा जाता है। देह तो देवता भी त्यागते हैं और लेते हैं, परंतु उन्हें देह लेने और त्यागने के समय दुख नहीं होता, इसीलिए उन्हें जीवन मुक्त माना जाता है। अतः मृत्यु को जीतने का अर्थ मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना, मनुष्य से देवता बनना, मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना अथवा नरक से स्वर्ग में जाना। प्रसिद्ध है कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ में आदि मध्य और अंत तीनों कालों में दुख नहीं होता। अब हम जानेंगे परमात्मा द्वारा कौन सा अमृत मिलता है। यह बात तो प्रसिद्ध है कि अमृत पीने से ही मनुष्य अमर हो जाता है, परंतु लोग यह नहीं जानते कि वह अमृत कौन सा है और उस अमृत को देने वाला वैद्य कौन है। आज वैद्यों ने अमृत धारा बना रखी है। पुजारी लोग देवताओं की मूर्तियों के चरण पर जल को उछालकर चरणामृत भी पिलाते हैं, परंतु समझने की बात यह है कि जन्म मरण में आने वाले मनुष्यों ने प्रकृति के तत्वों से जो यह अमृत बनाया है उनसे मनुष्य अमर कैसे हो सकता है? सच्चा अमृत तो अमरनाथ माने शिव पिता परमात्मा का गीता ज्ञान ही है। गीता के भगवान के महावाक्य है कि इस ज्ञान द्वारा महामृत्यु के भय से बचा जाएगा और स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त होगा और श्री माने देवपद तथा विजय माने मृत्यु पर प्राप्त कर लेगा, विजय मृत्यु पर प्राप्त कर लेगा अर्थात अमर माने देवता पद पा लेगा। जब मनुष्य मरने लगता है तब उसे गीता ज्ञान सुनाते हैं, अन्य सब दवाइयां छोड़ देने के लिए कह देते हैं। वे समझते हैं कि गीता सुनने से मनुष्य स्वर्ग में जाएगा, परंतु उस समय मनुष्य गीता ज्ञान धारण थोड़ी कर सकता है। निश्चय ही जो मनुष्य गीता ज्ञान को जीवन में धारण करके जीवन को पवित्र बनाता है उस मनुष्य के लिए मृत्यु एक पुल है जिस द्वारा वह इस मृत्यु लोक को पार करके अमर लोक में चला जाता है अथवा स्वर्गवासी होता है। परंतु जन्म मरण में आने वाले मनुष्य जो गीता ज्ञान सुनते हैं उनसे यह आश पूरी नहीं हो सकती, बल्कि परमात्मा स्वयं अवतरित होकर जो गीता ज्ञान देते हैं वही अमृत है और उसी से मनुष्य स्वर्ग में अमर पद पाता है। इसीलिए ही कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डींगा बाजे। मृत्यु को कैसे जीते? परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान अमृत पिलाकर और दिव्य गुणों की तथा ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा देकर मनुष्यों को तीन प्रकार से मृत्यु पर विजय प्राप्त कराते हैं। एक तो वह ज्ञान अमृत द्वारा मनुष्यों को इतना योग्य और गुणवान बना देते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद उनका नाम और यश बना ही रहता है। परमात्मा के ज्ञान के आधार से मनुष्य शरीर और कर्म इंद्रियों के द्वारा ऐसे कर्म करता है कि उसका गायन होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती का अथवा श्री राम और श्री कृष्ण का उदाहरण हमारे सामने है। आज दिन तक उनका कितना गायन होता है, उनकी कितनी यादगारें बनी हुई है। ईश्वरीय ज्ञान अमृत को पिए बिना और श्रेष्ठ कर्म किए बिना जो मनुष्य शरीर छोड़ जाते हैं वे गाय पूजे नहीं जाते। अधिक से अधिक वर्ष में एकाधी बार उनके अपने ही पुत्र पौत्र उन्हें याद कर लेते हैं, बस एक दो पीढ़ियों के बाद तो उन्हें इतना भी कोई याद नहीं करता। गायन और पूजन की बात तो छोड़िए, परंतु श्री राम और श्री कृष्ण इत्यादि को तो लोग प्रातः उठते ही नित्य प्रति याद करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी याद होती चली आती है। अतः मरने पर भी श्री राम नाम सत्य है, श्री कृष्ण नाम सत्य है, इन्हीं नामों को सत्य बोला जाता है। उनके अपने शरीर छोड़ने के बाद तो उनका नाम चला आ रहा है, परंतु ध्यान दीजिए कि दूसरों के मरने पर भी श्री राम और श्री कृष्ण के ही नाम सत्य बोले जाते हैं। उनके नाम तो क्या, उनके शरीरों को भी यादगारें मंदिरों में बनाकर उनके शरीरों को भी पूजा जाता है, क्योंकि उन शरीरों द्वारा उन्होंने पवित्र जीवन व्यतीत किया होता है अथवा श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं। उनके गुणों का भी कविताओं के रूप में गायन तथा कीर्तन होता है। उनके जन्म स्थान इत्यादि को भी लोग तीर्थ मानते हैं। उनके कर्तव्यों को चरित्र मानकर लोग उनके भी चित्र बनाते हैं और ग्रंथों के रूप में उनकी कथा करते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी हर वर्ष उनकी जयंती मनाते हैं। सरकार भी उनके मंदिरों को गिरा नहीं सकती, सारे देश की दृष्टि उन मंदिरों पर रहती है और यदि कोई उनको गिराने की कोशिश भी करे तो हजारों नर नारी उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार उनका नाम निशान मिटाने वाली मृत्यु पर वे विजय प्राप्त कर लेते हैं। भले ही उनका स्थूल शरीर यहाँ ही रहता, परंतु उनकी याद मनुष्यों के हृदय में जीती रहती है। दूसरे, परमपिता परमात्मा द्वारा ज्ञान अमृत पीने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा योगाभ्यास करने से मनुष्य को शरीर छोड़ते समय दुख या पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि एक तो उसने विकर्म नहीं किए होते हैं कि पश्चाताप हो, दूसरे वह शरीर भी ऐसे छोड़ देता है जैसे मनुष्य सहज ही अपने वस्त्र उतार देता है अथवा सर्प अपनी पुरानी खाल उतार कर नहीं धारण कर लेता है। ज्ञान अमृत का सेवन करने वाला तथा योग का अभ्यास करने वाला मनुष्य ऐसा अनुभव करता है जैसे कि वह ईश्वर की गोद में जा रहा है, जैसे कोई मुसाफिर सहज ही कोई सराय को छोड़कर घर में विश्रामित होता है। वैसे ही वह संसार रूपी सराय को छोड़कर परम धाम की मंजिल पर पहुंच जाता है, अथवा जैसे किसी मनुष्य की तरक्की होने पर उसका ट्रांसफर स्थानांतरीकरण हो जाता है, वैसे ही स्वयं को परमपिता परमात्मा के धाम में जाता देखकर अथवा स्वर्ग में देवपद के रूप में तरक्की पाते देखकर देह छोड़ते समय उसे आनंद ही होता है। अन्य लोग मौत से डरते हैं क्योंकि उन्होंने विकर्म किए होते हैं। तीसरे, परमपिता परमात्मा के ज्ञान से जो गति यानी कि मुक्ति और सदगति यानी कि जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, उसमें तो मृत्यु का भय कष्ट इत्यादि होता ही नहीं है। यही कारण है कि लोग मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अब ज्ञान अमृत प्राप्त करे, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे तथा योग के अभ्यासी बने ताकि अमर पद की प्राप्ति हो सके। मृत्यु से कौन छुड़ा सकता है? मृत्यु से वही छुड़ा सकता है जो मृत्यु से भी बलवान मृत्युंजय हो। काल से बचा वही सकता है जो कालों का भी काल हो। कर्मों के दंड और बंधन से मुक्त वही कर सकता है जो कर्मों की गहन गति को जानता हो और स्वयं इनके बंधनों से सदा मुक्त हो। मनुष्य से देवता वही बना सकता है जो देवों का भी देव हो। अतः यह एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी चाहिए कि संसार में अनन्य देन अथवा सहायता भले ही कोई मनुष्य दे सकता हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। इसी कारण एक परम पिता परमात्मा ही को मृत्युंजय अथवा अमरनाथ भी कहा जाता है। अन्य किसी को भी यह उपाधियां नहीं दी जा सकती। भक्तजन परम पिता परमात्मा ही से कहते हैं, हे प्राणदाता, हे जहापना, हे शरणदाता, हमारी रक्षा करो। सुख घनेरे देने वाला पिता भी केवल परम पिता ही को कहा जाता है। अतः काल कंटक दूर करने वाले पिता केवल परमात्मा माने कि शिव ही है। मौत के बाद हर एक आदमी के साथ जाता है एक बिस्तर और एक बोरी। सिकंदर जब मरा था तब उसके हाथ कफन से बाहर निकालकर खाली दिखाए गए थे, क्योंकि लोग मानते हैं कि मौत के बाद मनुष्य खाली हाथ जाता है। परंतु वास्तविकता यह है कि हर एक मनुष्य की मौत के बाद उसके साथ एक बोरी और एक बिस्तर जाता है। आप सोचिए, सोचते होंगे कि कभी हमने मरे हुए मनुष्य के साथ उसका बिस्तर और बोरी जाते हुए देखा तो नहीं है। परंतु आप जानते हैं कि इस संसार को एक मुसाफिर खाना भी कहा जाता है, और जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके बारे में लोग यही कहते हैं कि वह चल बसा। ही इज डिपोर्टेड। तो जैसे हम यहां जब रेल यात्रा करते हैं, एक शहर से दूसरे नगर को दूरी दूसरी नगर की ओर दूर कहीं जाते हैं, तो अपने साथ एक बोरी सामान की और एक बिस्तर भी ले जाते हैं, वैसे ही वह मनुष्य आत्मा रूपी मुसाफिर जब देह गेह छोड़कर रवाना होता है, तब वह भी अपने साथ एक बोरी और एक बिस्तर ले जाता होगा। मरने के बाद कौन सी बोरी और कौन सा बिस्तर मनुष्य के साथ जाता है? मरने के बाद मनुष्य बोरी में तो ले जाता है अपने मन की वृत्तियां अथवा बुद्धि का विस्तार। जैसे मनुष्य के बिस्तर में तकिया होता है जिस पर कि वह सिर टिकाता है, वैसे ही मनुष्य आत्मा अगले जन्म के लिए तकिया एक कलाम साथ ले जाती है, अर्थात एक बौद्धिक रुझान, मन की टेर या एक मति और स्वभाव का तकिया बनाकर ले जाती है, जिस पर कि अगले जन्म में उसका वचन तथा व्यवहार सिरहाने पर सिर की तरह टिका हुआ होता है। जैसे किसी मुसाफिर का तकिया स्वच्छ सुंदर और सुकोमल होता है और किसी का सड़ा हुआ सड़द गलत वाला या मैला कुचला होता है, वैसे ही किसी आत्मा का तकिया एक कलाम अर्थात वचन और व्यवहार की टेर या टेक कोमल पवित्र तथा सुंदर होती है, तो किसी का मलेच्छ जैसा। हर एक की बुद्धि का कोई तकिया कोई तकवा माने आधार कोई ठिकाना होता जरूर है। फिर जैसे मुसाफिर का बिछौना नरम गदेला सख्त चटाई या मामूली टाट अथवा अंगोछा बिछाने के लिए होता जरूर है जिस पर वह लेटता अथवा बैठता है, वैसे ही मौत के बाद मनुष्य आत्मा कर्म रूपी ताना बाना या पूर्व अभ्यास रूपी टिकाव साथ ले जाता है जिस पर कि उसका जीवन टिका हुआ होता है और जिस पर ही उसके भोग्य भाग्य का बिठौन होता है। अब बिस्तर गोल करो, परम धाम जाना है। आज लोग कहते हैं कि यह संसार मुसाफिर खाना है, हमें यहां से चले जाना है। कहां चले जाना है और कब जाना है यह तो उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। जिसे जाना होता है वह तो जाने की तैयारी में लग जाता है, वह तो अपना बोरी बिस्तर बांध लेता है, वह चादर सिरहाना समेट लेता है। परंतु आज तो मनुष्य ऐसा दिखता है जैसे कि उसे जाना ही नहीं हो, वह तो केवल कहता मात्र है कि मुझे इस मुसाफिर खाने से जाना है, वास्तव में तो उसने बिस्तर बोरी समेटने का संकल्प ही नहीं किया है। परंतु अब तो संसार रूपी परिस्थितियां हरी झंडी दिखा रही है कि अब परम धाम जाने का समय आ पहुंचा है। अब इस संसार में रखा ही क्या है, अब तो यह सृष्टि रूपी मुसाफिर खाना ही नष्ट होने वाला है। जैसे बहुत बड़ी पहाड़ी को तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने के बजाय उसे बारूद से उड़ा दिया जाता है, वैसे ही ये एटम और हाइड्रोजन बम इस विराट सृष्टि के महाविध्वंस के लिए बने हैं, क्योंकि अब इस जड़ जड़ी भूत सृष्टि का विनाश करने के यह समय आ चुका है और यह सत्युग की सुखधाम बनने वाला है। अतः अब जाना तो सभी को ही है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। इसीलिए अब हरेक को अपना बोरी बिस्तर संभाल लेना चाहिए, अब तो बुद्धि योग चारों तरफ से समेट कर बांध लेना चाहिए और बोरी में अच्छे ही संस्कार ले जाने चाहिए, वरना जैसे कोई व्यक्ति निषेध वस्तुएं कंट्रीब्यूटेड और प्रोहिबिटेड गुड्स जैसे कि अफीम चरस शराब इत्यादि वस्तुएं साथ में ले जाते हैं तो उनकी रास्ते में चेकिंग होती है, चेकिंग होने पर उन्हें दंड मिलता है, वैसे ही काम क्रोध इत्यादि विकारों के संस्कार जो व्यक्ति साथ में ले जाएगा उसे धर्मराज रूपी चेक पोस्ट में दंड भोगना पड़ेगा। यह भी काल उसकी खाल खींचेगा, यहां भी उसे यम से भय होगा, इसका क्या फायदा। अतः अब यही समय है कि मनुष्य को अच्छे संस्कारों की बोरी और योग का बिस्तर बांध लेना चाहिए। यही उसका सुख देने वाला सामान उसे रास्ते में काम आएगा और आगे भी, मौत से पहले क्या। जब मनुष्य मृत शैया पर पड़ा रहता है तो उसके संबंधी उसके मुख में गंगा जल डालते रहते हैं और उसे गीता पढ़कर सुनाते हैं। उनका यह विश्वास है कि इस प्रकार मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु सोचने की बात यह है कि तब तो उसका मनुष्य की इंद्रियां शिथिल हो रही होती है और विचार शक्ति मंद पड़ रही होती है। अतः उस समय उसे गीता सुनाकर पढ़कर सुनाने से उसके कानों में ओम ओम कहने या उसे शिव अथवा श्री कृष्ण या श्री नारायण का चित्र दिखाने से क्या होगा। उस समय उसके विकारी संस्कार तो बदल नहीं सकेंगे, न ही उसकी स्मृति परमपिता परमात्मा में स्थित हो सकेंगी, क्योंकि उसको जैसा अभ्यास पड़ा हुआ है वैसे ही वह चंचल रहेंगी। अतः मनुष्य को मृत्यु काल से पहले ही जब वह अच्छी हालत में होता है परमपिता परमात्मा का तथा आत्मा का स्पष्ट परिचय प्राप्त करके परमात्मा से योग युक्त होने का सहज अभ्यास करना चाहिए। उसे यह भी जानना चाहिए कि वास्तव में इस स्थूल गंगा जल से आत्मा पावन नहीं होती, बल्कि कल्प के अंत में परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जिन माताओं को ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं वे ही ज्ञान गंगाएं हैं। उन द्वारा ज्ञान लेना ही पतित से पावन बनने का साधन है, साधन करना है। उस ज्ञान के आधार पर परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति में स्थित होने का नित्य प्रति अभ्यास करने तथा नर से श्री नारायण बनने का लक्ष्य सदैव अपने सामने रखकर दिव्य गुण धारण करने से ही मनुष्य को मुक्ति की तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जीवन काल में पवित्र बनने, दिव्य गुण धारण करने तथा योग का अभ्यास करने से ही मनुष्य की अंतकाल में वृत्ति अथवा मति ऐसी होती है कि वह इन लोकों को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार आप देखते हैं कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके लिए उसके संबंधी दीपक भी जगाते हैं ताकि उसकी जो आत्मा है भटक न जाए। परंतु क्या आत्मा को स्वर्ग या परलोक की राह दिखाने के लिए यह मिट्टी का दीपक काम दे सकता है? नहीं, इसके लिए तो जीवन काल में स्वयं आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान योग के साधन से जगाना जरूरी है। क्योंकि जो लोग हरिद्वार जाते हैं और उस नाव में एक दीपक रखकर उसे गंगा में प्रवाहित करते हैं, जिसकी नाव का दीपक कुछ ही मिनटों में बुझा हुआ दिखाई देता है, उसके बारे में दर्शक कहते हैं कि यह स्वर्ग नहीं जाएगा। जिसकी नाव तैरती हुई दिखाई देती है और दीपक जगा हुआ दिखाई देता है, उसके बारे में वे कहते हैं कि यह सीधा स्वर्ग जाएगा। अब इसके पीछे भी रहस्य है। यदि कोई अपने जीवन रूपी नाव को इस संसार में दिव्य गुण रूपी पुष्पों से सजाता है और आत्मा रूपी दीपक ऐसा जगाता है कि वह प्रलोभन तथा संकटों रूपी वायु से नहीं बुझती, तो वह मनुष्य निश्चित ही तर कर स्वर्ग जाता है। वरना जिसका आत्मा रूपी दीपक बुझ जाता है उसका जीवन रूपी बेड़ा सचमुच डूब जाता है, वह नरकगामी होता है। फिर आप यह भी देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके संगी साथी उसके शव को जब मरघट में ले जा रहे होते हैं और मरघट के निकट पहुंचकर वे अर्थी की दिशा बदल देते, वे उसके पांवों को नगर की ओर तथा सिर को शमशान की ओर कर लेते हैं। वास्तव में तो मृत्यु से पूर्व ही राम नाम संघ है अथवा शिव नाम सत्य है, याद रखना चाहिए। तब तो सभी मनुष्य तन धन और विकारों के धंधों में लगे रहते हैं उस समय में, और जब प्राण चल बसता है तब तो वह सुन भी नहीं सकता। इसी प्रकार अब मनुष्यों को चाहिए कि जीते जी ही पैर नरक की ओर कर ले और मुंह शमशान की ओर कर ले, अर्थात जीते जी ही मोह ममता को त्याग कर अनासक्त वृत्ति से रहे और ध्यान दे। परंतु आश्चर्य यह है कि मनुष्य दूसरों को मरते हुए देखते हुए भी बार बार अपनी मृत्यु के बारे में भूल जाता है और अपनी राह से भटक कर विषय विकारों में लगा रहता है। राम नाम सत्य है आदि घोषों का जो अर्थ है, गीता ज्ञान का जो अध्ययन है, गीत ज्ञान गंगा रूपी अमृत का जो पान है, आत्मा रूपी दीपक जगाने तथा नगर की ओर पाव करने की जो युक्तियां है, वह वास्तव में मौत से पहले ही प्रयोग में आनी चाहिए। परंतु संसार की यह कैसी उल्टी चाल है कि उन्हें मौत के बाद ही प्रयोग में लाया जाता है या मौत के बाद ही प्रयोग किया जाता है। एक कविता की चंद पंक्तियां हैं जो आपके लिए। ज्ञान से खूब श्रृंगार कर लो, अब तुमको वैकुंठ में है जाना। ज्ञान से खूब श्रृंगार कर लो, अब तुमको वैकुंठ में है जाना। बदलो अपने वस्त्र पुराने, अब आया है नया जमाना। चितड़ों में ही पड़े पड़े क्या चल दोगे दरबार शहाना। काम शत्रु को बदलो प्रेम में, आधे कल्प का वैर भुलाना। क्रोध को बदलो दिव्य तेज में, अटल अखंड स्वराज्य बनाना। लोभ तुरंत ही बदल जाएगा, दैवी गुण की करो धारणा। मोह बंधन तो टूट जाएगा, शिव पिता का नाता माना। अहंकार की माया भागे, जो स्वरूप में ही हो टिक जाना। ज्ञान से खूब श्रृंगार कर लो, अब तुमको वैकुंठ है जाना। फिर करेंगे कब। मनुष्य और दूसरे प्राणियों में एक अंतर यह भी है कि मनुष्यों में बुद्धि अधिक है। बुद्धि द्वारा ही मनुष्य ने संसार में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, खान पान और रहन सहन के तरीकों में प्रगति की है और प्रकृति के तत्वों को वश में करने के यत्न किए हैं। बुद्धि बल के आधार पर मनुष्य न केवल अन्य जीव प्राणियों पर राज्य करता है, बल्कि कई तो ऐसे भी है जो लाखों करोड़ों मनुष्यों पर राज्य करते हैं और वे जन समूह के विचारों को मोड़कर संसार में बड़ी बड़ी क्रांतियां लाते हैं। देखा जाए तो मनुष्य के सुख दुख का जो संबंध है उसकी बुद्धि के साथ है, क्योंकि सुख या दुख रूपी प्रारब्ध भी मनुष्यों को अपने कर्मों के आधार पर मिलती है। कर्म करने के पहले मनुष्य के मन में संकल्प उठता है और संकल्प अथवा मन को कंट्रोल करने वाली या मति देने वाली तो बुद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्ता है। यह एक सीढ़ी द्वारा वह नीचे पतन के गर्त में उतर सकता है, विनाश की खाई में गिर सकता है। इसीलिए बुद्धि को ठीक रखना बहुत जरूरी है। परंतु आज हम देखते हैं कि मानव उच्च विद्वान वैज्ञानिक अथवा कलाकार तो बन गया है, परंतु सदाचार और सद्भावना की दृष्टि से वह पीछे ही हटा है। मनुष्य अधिक तर्कशील और विकास विचारशील तो बना ही है, परंतु उसके विचारों में सात्विकता
कम ही हुई है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने का ही यह परिणाम है कि आज हर देश में लड़ाई, झगड़े, कलह, कलेश और अशांति है और हर एक मनुष्य का अपना मन भी अशांत है। तो प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य का मन किसी प्रलोभना या उत्तेजना के वश में बिगड़ जाए तो उसे बुद्धि के अच्छे विचारों द्वारा कंट्रोल में ला सकते हैं, बुद्धि कंट्रोल में ला सकती है, परंतु यदि मनुष्य की बुद्धि ही बिगड़ जाए तो उसे ठीक कैसे किया जाए? बुद्धि सात्विक कैसे बने? बुद्धि को सात्विक बनाने के कार्य के लिए सभी कहते हैं कि मनुष्य सत्संग में जाया करे। सत्संग में अच्छे वचन सुनने से और परम पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से मनुष्य की बुद्धि सत्वगुणी बनती है। जैसे बर्तनों को साफ करने से साफ किया जाता है, कपड़ों को साबुन से धोया जाता है और शरीर को पानी से स्वच्छ किया जाता है, वैसे ही बुद्धि को पवित्र बनाने का साधन ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग ही है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर ही न जाए जहाँ की ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा होती है, वास्तविक योग की शिक्षा दी जाती है या सही अर्थों में सत्संग होता है, तो बताइए कि उसे सद्बुद्धि कैसे मिलेंगी? सद्बुद्धि न मिलने से वह अपने मन को कंट्रोल कैसे कर सकेगा और मन पर कंट्रोल न होने से उसका आचरण कैसे ऊंचा हो सकेगा? और आचरण ऊंचा नहीं होगा तो वह जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकेगा? अब हंसी की बात सुनिए, परंतु आज हम लोगों को कहते हैं कि आप प्रतिदिन घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा समय निकालकर एक सप्ताह तक हमारे आध्यात्मिक ज्ञान केंद्रों पर अथवा संग्रहालय पर पधारकर ईश्वरीय ज्ञान या सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त कीजिए, तो प्रायः लोग टालमटोल करते हैं। उनमें से कई लोग तो बहुत ही ऐसे सुंदर उत्तर देते हैं जिन्हें सुनकर बहुत हंसी आती है और उन लोगों पर दया भी आती है। नमूने के तौर पर हम दो तीन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए उत्तर आपसे चर्चा कर रहे हैं। एक माता से कहा गया, ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन में बहुत ही पवित्रता और शांति प्राप्त होती है और सहज राजयोग द्वारा प्रभु से मनोमिलन का आनंद भी मिलता है। आपको हमारा निमंत्रण है कि कुछ दिन आकर कर मानव जीवन के लक्ष्य को तथा जीवन को सुखी बनाने के पुरुषार्थ की रूपरेखा को समझो। इसके उत्तर में उस धनाढ़ माता ने कहा, हाँ मेरा मन तो करता है कि प्रभु चर्चा सुनूं, बहुत दिल से सुनूं, परंतु क्या करूं, अभी परसों ही मेरी भैंस ब्याही गई है, उसकी बछिया की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए अभी तो कुछ दिन में आ नहीं सकती। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति को प्रभु परिचय प्राप्त करने तथा आत्म अनुभूति माना सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए सहज ज्ञान प्राप्त करने हेतु कुछ दिन प्रातः अमृत वेले आने के लिए निमंत्रण दिया गया। तो वे बोले, प्रातः काल तो मैं मोती माने अपने कुत्ते मोती को सैर कराने जाया करता हूँ। सारा दिन तो मैं घर से बाहर रहता हूँ और मोती अकेला रहता है, यही एक टाइम है जब वो मेरे साथ रहकर कर खुशी महसूस करता है, इसीलिए अमृत वेले आना तो मुश्किल है और दिन भर तो वैसे ही मुझे समय नहीं मिलता। ऐसे ही तीसरे एक व्यक्ति को जब आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को दिव्य बनाने का सुझाव दिया गया तो वो बोले कि मैं रात्रि को 11-12 बजे तक समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते ही सोता हूँ और प्राय सवेरे उठते ही चाय का प्याला पीते जब तक समाचार पत्र न पढ़ लूं तब तक तो ऐसा महसूस होता है कि जब आज मेरा खजाना ही छिन गया है। इसके अलावा जितना समय है उसमें से अधिकांश समय तो मैं दफ्तर में और घर में कोलू में जुटा हुआ रहता हूँ और ऐसे ही मेरे जीवन का अंत होगा, इसी में ही मैं खुश भी हूँ। तो देखिए देखिए तो लोग कैसे कैसे उत्तर देते। सोचने की बात तो यह है कि जो व्यक्ति बुद्धि की शुद्धि में अथवा अपने आध्यात्मिक उन्नति में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते उनके बारे में क्या किया जाए? उनकी बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उन्हें अपने हित और अहित का भी ज्ञान नहीं है और वे एक कोलू के बैल की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। वे ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को ही नहीं जानते और शायद उसे कठिन समझते हैं, हालांकि वह है बहुत सरल। ईश्वरीय ज्ञान कितना सहज है। आज छोटे छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तकें इतनी बढ़ गई है कि जब वे स्कूल में जाते हैं तो अपने हाथों में लोहे का एक छोटा सा बॉक्स अपनी किताबों और कॉपियों आदि में भर कर कर ले जाते हैं, या तो कोई बुलावी ही उनके साथ उनकी पुस्तकें का जो बॉक्स है वो लेकर कर जाती है। यदि गांव का कोई व्यक्ति उन बच्चों को बॉक्स को ले जाते हुए देख ले तो वो बेचारा समझेगा कि यह लड़का किसी दूसरे गांव में जा रहा है, शायद यह अपनी नानी के यहाँ कुछ दिन बिताने के लिए चल पड़ा है, परंतु वास्तव में वो जा रहा होता है अपने स्कूल। आप देखिए कि इतनी पुस्तकें तो बच्चे पढ़ते हैं परंतु उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो उनके माता पिता कहते हैं कि अभी तो ये छोटे बच्चे हैं, ईश्वरीय ज्ञान समझ ही नहीं सकेंगे। परंतु आप सोचिए कि वे स्वयं के बारे में यह जानना कि मैं आत्मा हूं और परमपिता परमात्मा की संतान हूं, क्या यह कोई बहुत बड़ी बात है? जबकि बच्चा अपनी देह के माता पिता के नाम धाम आदि के बारे में जानता है और इतने सारे अध्ययन के विषय पढ़ता है तो क्या वह आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा का नाम धाम आदि नहीं समझ सकता? अपने आप तथा अपने बाप माने परमपिता परमात्मा को जानने में क्या कोई कठिनाई है? इसी प्रकार यदि माताओं से ईश्वरीय ज्ञान लेने को कहा जाए तो वे कहती हैं कि हम तो अनपढ़ है अथवा हम तो बहुत बूढ़ी हो गई है, अब भला ईश्वरीय ज्ञान कैसे ले सकेंगी? परंतु आपने ध्यान दिया होगा कि माताएं रिश्ते नातों को बहुत खूब याद रखती है। आपने कभी उन्हें ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि मेरी देवरानी की चाची की सास की भतीजी के लड़के की शादी। इस प्रकार के पेचीदा रिश्तों को याद रखते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, वे रख सकते हैं याद उनको। तब क्या वे इतनी सी बात नहीं समझ सकती और इतना सीधा सा नाता याद नहीं रख सकती कि परम पिता हमारा परम पिता है, परमात्मा हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सदगुरु है जो कि हमें संपूर्ण पवित्रता सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देता है? बुजुर्ग लोगों को आप ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए कहिए तो वे कहते हैं अब हम ज्ञान सीखने से क्या करेंगे, क्या बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं? हमने तो जो ज्ञान सीखना था सीख लिया, अब हमारे सीखने का जमाना तो बीत गया। परंतु आपने देखा होगा कि वह बूढ़े जब भी अपने पोतों तथा पोतियों के बीच में बैठते हैं तो बहुत खुशी से सुनते हैं और सुनाते हैं, जब हमारे दादा यहाँ के चौधरी थे तब गांव में खेती बहुत खूब हुआ करती थी, तब एक बार क्या हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ। ये इस प्रकार की लंबी चौड़ी आप बीती आंखें देखी या सुनी सुनाई बातें करने पर भी कभी नहीं रखते। तो क्या इतना मानना या जानना कि सतयुग के आरंभ में इस सृष्टि पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का देवी स्वराज्य था, तब वहां संपूर्ण पवित्रता सुख और शांति थी, फिर बाद में त्रेता में सीता श्री सीता और श्री राम का राज्य था, द्वापर के आरंभ में भारत पतित होना शुरू हुआ, इस प्रकार आत्माओं के जन्म और की जो दिलचस्प कहानी है वे नहीं समझ सकते? निस्संदेह बच्चे बूढ़े नर नारी सभी सहज ईश्वरीय ज्ञान सीख सकते हैं और अपनी बुद्धि को पवित्र एवं दिव्य बना करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं और समाज में एक दिव्य क्रांति ला सकते हैं। परंतु आज उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि वे इस पुरुषार्थ के महत्व को समझते नहीं और दूसरे कि वे बिल्कुल सुस्त अथवा आराम पसंद बन गए हैं। पल में प्रलय होंगी फिर करोगे कब, फिर आज की दुनिया में लोगों की मनोवृत्ति ही बन गई है कि वे शुभ कार्यों को स्थगित माने पोस्टपोन कर दिया करते हैं। कोई कहता है कि अभी 3-4 वर्षों के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय दूंगा। दूसरा कहता है कि शिवरात्रि आने वाली है, बस तब से लेकर मैं पवित्र बनूंगा। अन्य कोई कहता है कि मेरा व्यापार ही ऐसा है, मुझे हिसाब किताब के कार्यों में समय ही नहीं मिलता, मैं अभी 1-2 वर्षों में सारा सिलसिला ठीक करके फिर ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय निकालूंगा। परंतु वे ये नहीं सोचते कि मनुष्य की किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, मौत का तो कोई भी कभी भी बहाना नहीं बना सकता। मृत्यु न तो यह देखती है कि मनुष्य रिटायर्ड हुआ है या नहीं, शिवरात्रि आई है या नहीं, या सेठ जी ने हिसाब कर लिया है या नहीं, बिल्कुल नहीं देखती, बल्कि वे तो मनुष्य को जैसे जैसे काबू कर लेती है। अतः मनुष्य को परम पिता परमात्मा का परिचय प्राप्त करने, बुद्धि को सात्विक एवं पवित्र बनाने तथा आत्मभूति करने के लिए कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के लिए तो कहा गया है, कल करना सो आज कर, आज करना है सो अब, पल में प्रलय होंगी फिर करोगे कब। भक्ति मार्ग के लोगों में एक आख्यान प्रसिद्ध है, कहते हैं कि एक मनुष्य मरने के बाद भगवान के पास गया तो भगवान ने उसे उलाना दिया कि हे भक्त, मैंने तुम्हें 3 तार भेजे परंतु तुमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया और एक का भी उत्तर नहीं दिया। भक्त ने कहा, भगवान मेरे पास तो कोई तार नहीं आया। भगवान ने कहा, पहली तार यह भेजी कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए परंतु तुमने यह नहीं समझा कि भगवान का बुलावा आने वाला है, फिर तुम्हारे दांत हिलने लगे, यह दूसरी तार थी, फिर तुम्हें सुनाई कम देने लगा और आंखों की ज्योति भी मंद हो गई परंतु फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, आखिर मैंने बुला लिया। आज तो मनुष्य बुढ़ापा आने से पहले ही मर जाता है, आया परवाना और हुआ रवाना, कोई भी पहले से नहीं जानता। तो कहने का भाव यह है कि यदि कोई बूढ़ा भी होकर मरे तो भी ईश्वरीय स्मृति पर तो पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा। कहावत भी है कि ग्राहक और मौत का कोई वक्त नहीं है। एक मनुष्य कमरे के भीतर के कमरे, फिर उस कमरे के भीतर वाले कमरे, इस प्रकार 7वीं कोठरी में बैठा हो और वहां भी उसकी रक्षा के लिए पहरेदार खड़ा हो तो भी मनुष्य की जो मृत्यु है पहुंचकर अचानक ही उसको अपने वश में कर सकती है। अतः मनुष्य को धन दार मित्र सखा यौवन और महल माणियों का अभिमान न करके प्रभु की स्मृति के सर्वोत्तम कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कल तक हम रहेंगे भी या नहीं। अगर रहेंगे भी तो आज हमारे पास जो साधन है वो कल भी हमारे पास होंगे या नहीं। कल पर शुभ कार्य को स्थगित करना गोया आया हुआ भाग्य लौटा देना है। कहां से आया कहां को जाना पता भी है इंसान तुझे, किस मार्ग का तू मुसाफिर है कुछ इसका भी है ज्ञान तुझे, क्या कार्य करने आया था किस ड्रामा का तू एक्टर है, क्या पार्ट बजाना है तूने क्या दाता का फरमान तुझे, क्यों माया के चक्कर में फंसा उलझा है 5 विकारों में, क्यों आसुरी मत को अपनाया शिव मत को भूला ज्ञान तुझे, आंखों पर पट्टी बांधी रखी ठोकर पर ठोकर खाता है, क्यों पतित हुआ तू फिरता है नहीं पावनता का ध्यान तुझे, वह ज्ञान के हीरे देता है पर झोली है तेरी छलनी सी, तू निर्धन खुद ही होता है वह करता है धनवान तुझे, तकदीर वह तेरी चमकाता तू रोता अपनी किस्मत को, उठ देख जरा वह विनाश खड़ा और पापों का बोझा चढ़ा, अब गफलत मत कर योग लगा है जीवन का भी ज्ञान तुझे। विचार कीजिए, एक बात और विचारनीय है, प्रायः लोगों को हम यह कहते हुए सुनते हैं कि मेरे भाग्य ही ऐसे हैं, मेरी तकदीर ही ऐसी है। यह भाग्य अथवा तकदीर क्या है? यह कर्म फल अथवा दंड भोग या पुण्य फल ही तो है। तो यदि मनुष्यों के कर्मों का फल उसे मनुष्य योनि में मिलता ही ना हो तो तब फिर मनुष्य योनि में भाग्य प्रलब्ध कर्म भोग आदि का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। परंतु वास्तविकता अनुभव और उक्ति से कहते हैं, जैसे मनुष्यों द्वारा निर्मित शासक माने राजा और न्यायालय मनुष्य योनि में ही उसे बुरे कर्मों के लिए दंड देते हैं, वैसे ही शाश्वत विधान ही यह है कि मनुष्य आत्मा को मनुष्य योनि में ही कर्म फल मिलता है। अतः मनुष्य योनि केवल कर्म योनि ही नहीं है बल्कि भोग योनि भी है, वरना मनुष्य सभी सुखी होते और पशु पक्षी इत्यादि सभी दुखी होते। अगर मनुष्य आत्माएं बुरे कर्मों के फलस्वरूप पशु इत्यादि योनि में भ्रमण करती तो आज मनुष्यों की गणना बढ़ती न जाती बल्कि बहुत ही कम हो जाती, क्योंकि इस कली काल में तो प्रायः सभी मनुष्य आत्माएं अधिकतर पाप कर्म ही कर रही है।